जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये जो सेशन शुरू करें जी आज, उम्मीद ये है अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी हुई तो इसको जारी रखेंगे। द आइडिया वाज प्राइमरीली कि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से आपने कुछ अरसे से अगर मेरी ये चीज़ें फॉलो की हैं तो ये आपके नोटिस में आया होगा दैट इसकी कोशिश है कि हम बच्चों की तरबियत अपने हवाले से बात अपनी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स जो विच गो अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इसके हवाले से और रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से भी, यानी कुछ चीज़ें जो हैं रिलीजियस ट्रेनिंग रिलीजियस रेयरिंग के हवाले से बच्चों की, उस पे भी हम कुछ रोशनी डालें। कुछ प्रोग्राम्स कुछ मेरी जो स्किल्स मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, जाहिर है कि यहाँ पर ये कोशिश होगी कि ये बिकॉज़ इट्स एन ओपन सेशन, यहाँ पर इट्स नॉट अ क्लासरूम, ना हमारा ये सेशन इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि हम वो एक्सरसाइजेस भी करें, लेकिन इसकी एक इंट्रोडक्शन कम अज़ कम हो जाए आपको कि हम करते क्या हैं। मेरा आज का जो इरादा था वो तो एक्चुअली ये था कि सिर्फ एक वेलकम सेशन हो और उसमें लोगों को बुला के तो रिक्वेस्ट की जाए और जो जो इसको सुन रहा है जो जो इसमें इंटरेस्टेड है उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपनी जो इस सिलसिले में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर मैं अकेला आदमी सोच रहा हूँ तो उसके ऊपर दैट ऑब्वियसली विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस। उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए, उसको ज़्यादा वसी करने के लिए, ज़्यादा इनकम्पसिंग करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि लोगों की भी इनपुट्स उसमें शामिल हों। तो एक तो ये इनविटेशन थी। दूसरा जो एक एस्पेक्ट जिसको मैं सेरेंडिपिटस कहूँगा, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर इट, वो मैं आज समझता हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फॉर कोशिश करूँगा कि ये विद इन 15 मिनट्स हो जाए जी, एंड देन वील बी ओपनिंग द फोरम फॉर क्वेश्चन आंसर्स आज के लिए। मैंने जब ये इसका तारुफ कराया एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मैं और मेरे मोहतरम दोस्त यहाँ पे अलमौरिद में जो हैं जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे ये कहा कि ये जो अगर हम इस कोर्स को ऐड कर दें, कोर्स बना लें इसका, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, शुड वी कॉल इट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मुझे ख्याल आया कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही हैज़ रेज्ड, और इस पर शायद हमारा पहला सेशन इसी पर होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अबाउट डेवलपिंग योर पर्सनल शख्सियत की डेवलपमेंट और किरदार की डेवलपमेंट में एक बुनियादी फ़र्क है जी। हम इसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार असल में नहीं है, लेकिन कई दफ़ा इनको गडमट कर देते हैं, और इसकी वजह एक, हम जिस जिस डेवलपमेंट में जिस जिस फोरम पे, ख्वा वो स्कूल्स हों, ख्वा वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कैरेक्टर डेवलपमेंट के उनवान से जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो असल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है एक्चुअली, ठीक है जी। इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा दे अपने मुताले को जब शेयर करूँ अगर मैं, तो दो बड़े नाम दो बड़ी कैटेगरीज हैं। एक एक साहब ने इसको जब बयान किया तो ये कहा कि एक वो डेवलपमेंट है जिसको आप ये कह सकते हैं कि रेज्यूमे ट्रेट्स की डेवलपमेंट, रेज्यूमे ट्रेट्स, आपने अपना रेज्यूमे बनाया होगा ना, कई मरतबा बनाएंगे या बनाया होगा, तो उस रेज्यूमे में जो आप अपनी ट्रेट्स लिखते हैं वो असल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो ट्रेट्स हैं जो दिखती हैं, यू कैन एक्चुअली शो देम, यू वॉन्ट टू शो देम, यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल नो कि आपने क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। एक वो एस्पेक्ट है जिसको आप रेज्यूमे ट्रेट्स कह सकते हैं या जिसको आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स कह सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो हैं जो आपकी दिखती हैं, जो सामने हैं, और दूसरी वो ट्रेट्स हैं जिनको आप योलॉजी ट्रेट्स कह सकते हैं। ये वेस्ट में इसकी एक ट्रेडिशन है जिसको जो जब ये योलॉजी पढ़ते हैं, ये अगर कोई आदमी फौत हो जाता है जब, तो उसके क्लोज रिलेटिव्स में से कोई या कुछ रिलेटिव जो हैं वो आकर उसके बारे में बातचीत करते हैं उसके मरने के बाद, यानी हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एट आफ्टर योर डेथ। इसको सोचना, इसको ख्याल करना, ये असल में कैरेक्टर ट्रेट्स की तरफ लेके जाएगा कि वो चीज़ें, मिसाल के तौर पर वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन। आई डोंट थिंक सो, नॉट मैनी पीपल विड रियली क्रेव टू बी रिमेम्बर्ड बाय बीइंग वेरी वेल ड्रेस्ड, और बड़े वो रख रखाव वाले थे, तकल्लुफ करने वाले थे। ये जो ये सारी ट्रेट्स हैं ये वो हैं जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में इम्पॉर्टेंट हैं। कैरेक्टर ट्रेट्स वो हैं कि जो आपकी, मिसाल के तौर पर आप इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, लविंग इंसान थे आप, यू आर अ लविंग फादर और लविंग हस्बैंड और अ लविंग ब्रदर, दिस इज़ वॉट यू वुड वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज, नॉट लाइक यू आर अ वेरी यू नो प्रोफेशनली वेरी हाई अप और सब कुछ, यू नो दीज आर थिंग्स जो आपकी रेज्यूमे में बड़ी अच्छी लगेंगी। ये एक बेसिक डिफरेंस है। मैं ये चाहूँगा कि इस कन्फ्यूजन की भी वजह आपको थोड़ी सी इसके बारे में भी बात करें कि क्यों है कन्फ्यूजन, यानी हम जिस और इस कन्फ्यूजन के नताइज क्या हैं। आपने कभी गौर किया होगा अपने हवाले से कि जिस वक्त कभी कोई सोचा आपने कि मैं कोई आदत है जिसको ओवरकम करना चाहता हूँ, एनी थिंग दैट यू थिंक ऑफ, मैं आई वुड लाइक टू ओवरकम माई इम्पेशेंस फॉर इंस्टेंस। उसके नतीजे में होता ये है कि आप फौरन वो जगहें सोचेंगे अपने दिल में लेकर आएंगे अपने जहन में कि वो कौन कौन सी जगह है जिधर मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं ड्राइव करते हुए बड़ा इम्पेशेंट हो जाता हूँ, यू नो अगर कोई ज़्यादा यू नो गलत तरीके से चला रहा है तो मैं आई वुड एक्चुअली लूज़ माई टेम्पर मैनी टाइम्स। ठीक है जी, तो जैसे ही मेरे जहन में ये आता है तो कि मैंने इसको ठीक करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये कि मैं इस गुस्से को ठीक कर लूँ, यानी वो जो ज़ाहिर हो रहा है मैं उसी को ठीक कर लूँ, इसी को मैं डेवलपमेंट समझता हूँ। ठीक है जी, जो चीज़ मैं मिस कर जाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस इस यू समझ लें इसकी क्या कहेंगे इसको इसके जहन पे हावी होने की वजह से, ये मेरी परसेप्शन के ऊपर जो हावी हुआ हुआ है, मैं इसको जब नहीं समझ पाता हूँ तो मेरा ये ख्याल है कि असल में बिहेवियर्स हैं जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है। मैं खा अपने बारे में बात कर रहा हूँ, खा अपनी औलाद के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जब अपनी औलाद के बारे में सोचता हूँ कि हमें उनके कैरेक्टर की डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो आप देखिए फ़ौरन जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो हैं जो करते हैं वो, यानी वो मेरी बात तवज्जो से सुने, वो मेरी बात माने, वो करें जो कि हम उनसे कह रहे हैं कि वो करें, वो नमाज पढ़ा करें, वो लोगों के साथ अच्छी तरह बात करें, वो सॉरी थैंक यू वेलकम इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनको हम सोशल एटिकेट कहते हैं उनको अडॉप्ट करें। हम बहुत कम इस पे सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनके पीछे कुछ मौजूद है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा या ये हो रहा है। ठीक है जी, समटाइम्स वी वुड जस्ट लाइक देम टू डू व्हाट वी वांट देम टू डू विदाउट नोइंग व्हाई आर दे नॉट डूइंग व्हाट वी वांट देम टू डू ऑन देयर ओन, वो खुद से क्यों नहीं कर रहे। चुनाचे इसका नतीजा एक और निकलता है, ये जिसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। बिहेवियरिज्म का मतलब ये है कि इंसान बेसिकली अपने बिहेवियर्स हैं, यानी अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप अच्छे इंसान हैं और अगर आपका बिहेवियर बुरा है तो आप बुरे हैं। तो हम बिहेवियरिज्म का शिकार होकर उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के पीछे पड़ जाते हैं। दिस इज़ वॉट रियली हैपन्स। और ये जो चीज़ है इसका आपके जहन पर गालिब आने का नतीजा ये निकलता है कि इसके नतीजे में आप उसको अवॉइड करने लग पड़ते हैं कि जो असल मसला है। बच्चा चीखने लग पड़ा है, मेरे पास आम तौर पर जब लोग ये अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी माय चाइल्ड बड़ा नॉर्मल बच्चा था, ठीक था, लेकिन अब वो खामखा चीखने लग पड़ा है, वो एक्सप्लॉइट करता है मेरी मोहब्बत को और सारा कुछ इस तरह की बात। ये क्यों करता है वो, आप अगर पलट के पेरेंट्स से पूछें कि आपके ख्याल में ये क्यों करता है तो आई डोंट नो क्यों करता है, तो फिर इसको आप ठीक कैसे करेंगे। हैव यू एवर टॉक्ड टू द चाइल्ड कि वो क्या सोच रहा है। हैव यू एवर ट्राइड टू इवन थिंक अबाउट इट कि उसके अंदर के प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं जिसकी वजह से वो एक तरफ या दूसरी तरफ उसका बिहेवियर दिखने लग पड़ा है। वो अंदर के प्रोसेसेस आपके क्या चल रहे हैं कि जिस वक्त आपको गाड़ी चलाते हुए, ये जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम डालती है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं गाड़ी चलाते हुए गुस्से में आ जाता हूँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है? एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो और उसके ऊपर फिर वाकई गौर करने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। उन प्रोसेसेस को ठीक करना असल में ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट इंप्रूविंग हाउ आई अपीयर। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज इंप्रूविंग व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी। वो नजर नहीं आएगी, यानी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हो सकता है कुछ भी पता ना चले। मैं जो कुछ आपको दिख रहा हूं, दिस इज माई पर्सनैलिटी, ठीक है जी। आपको अच्छी लगे बुरी लगे, दिस इज समथिंग दैट यू हैव, आपकी ओपिनियन बन गई है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो मेरी पर्सनैलिटी है, आपको ये दिख सकती है, ये आपके ऊपर नुमाया हो सकती है। विद इन 5 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। मेरे कैरेक्टर से वाकिफ होने के लिए आपको मेरे साथ मेरे अप्स एंड डाउन्स के अंदर से गुजरना होगा। आपको ये देखना होगा कि ये आदमी गाड़ी चलाते हुए किस तरह बिहेव करता है, इसको अपने इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर कितना कंट्रोल है। ये जो सुपरफिशियली हम, मिसाल के तौर पर ये मुझे कहा गया कि 2 घंटे का हमारा सेशन है, सुपरफिशियली मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए बिल्कुल वो बन सकता हूँ जो असल में मोए जमजद नहीं है। ये मेरी वो पर्सनैलिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है ना जी। बट वॉट आई रियली एम माइट नॉट बी वेरी यू नो एक्सेप्टेबल फॉर यू, और उसके नतीजे मैं उसको छुपा सकता हूँ। ये मेरे अंदर सलाहियत है, ये मतलब ये इंसान हम सब में ये सलाहियत है कि हम इस वक्त वैसे बिहेव कर सकते हैं कि अपने ऊपर कुछ पर्दे कुछ मास्क लगा सकते हैं। इसी के कुछ नतायज निकले हैं जी। मैं आई वुड लाइक टू जस्ट वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट देम। एजुकेशन में मिसाल के तौर पर ये जितने भी आपके मैन मेड सिस्टम हैं ना जी, जितने भी मैन मेड सिस्टम हैं, एजुकेशन इज अ मैन मेड सिस्टम। यानी ये समझ लीजिए कि ये जो बात जब हम करते हैं कि एक इतने साल के बच्चे को इतना कुछ आना चाहिए, ये असल में कोई अल्लाह ताला का फैसला नहीं है, ये हमारी असेसमेंट है अबाउट द एवरेज चाइल्ड, और उसके बेसिस पर हम उसको अप्लाई कर देते हैं। और अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब, या वो नहीं सीख रहा उतना, तो इसके बाद हम उससे कहते हैं ये बिलो एवरेज है, और अगर वो उससे ज़्यादा सीख सकता है तो ये अबव एवरेज है। ये एवरेज कोई अल्लाह ताला की बनाई हुई नहीं है, ये हमारा सिलेक्टेड सैंपल था जिससे हमने एवरेज निकाली है। वो एवरेज डिस्टॉर्टेड भी हो सकती है, ये हमने कभी सोचा नहीं। और हमारा एक पैराडाइम भी है, हमारा पैराडाइम ये है कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, लेकिन हम फिर भी उसको एवरेज के मुताबिक परखना भी चाहते हैं कि वो एवरेज में किधर फॉल करता है। अब ये देखिए, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। ये जो मैन मेड सिस्टम्स होते हैं, ये मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बड़े आराम से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस कमरे में बैठे हुए जितने भी लोग हैं और जितने भी ये सुन रहे हैं, उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया भी हुआ है। यानी कितनी बार ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि आपने अपनी क्लासेस में जो एग्ज़ाम था, आपका फाइनल पेपर था, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल का हो, चाहे वो स्कूल्स के लेवल का हो, चाहे बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के लेवल, वो उसकी तैयारी विद इन 2 डेज कर ली थी, हुआ ना जी। ये आपने सिस्टम को मैनिपुलेट किया है। सिस्टम आपकी लर्निंग के लिए बना था, लर्निंग इज़ अ नेचुरल सिस्टम, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यानी आप लर्न नहीं कर सकते इन 2 डेज, बट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू एंड पास द टेस्ट एट अ वेरी वेरी गुड ग्रेड इन विद इन 2 or 3 डेज। मैं यानी कसम खा के कहता हूँ कि ये मैंने किया हुआ है जी, इसलिए क्योंकि ये किया जा सकता है, दिस कैन बी डन। इसको कहते हैं क्रैम किया है, यानी आपने वो जो प्रोसेस आपने इख्तियार करना था ओवर 6 मंथ सेमेस्टर और ईयर, ओवर अ ईयर, वो आपने क्रैम करके विद इन 2 or 3 डेज उसको यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है जी। लेकिन नेचुरल सिस्टम्स में ये नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस, आप एग्रीकल्चर में क्रैमिंग नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मैं, मेरे पास अभी, मैं जब आ रहा था तो हाफिज़ साहब मुझे, मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है उधर डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, और उसके नतीजे में मूंगफली जो है वो अब लगाई जा सकती है, यू नो दिस वेरी गुड न्यूज़। और अब वो मुझे बता रहे थे कि कब कब मुझे और बारिश चाहिए। ये जो चीज़ है, जब वो बारिश चाहिए, जब जब पानी चाहिए, जब जब ज़मीन की नरमी आपको मैसर होनी चाहिए फॉर दी राइट ग्रोथ ऑफ मूंगफली, तो उसमें आप अगर वो ना हो तो नहीं होगी। एग्रीकल्चर को आप क्रैम नहीं कर सकते. आपके सामने ये चीज़ है कि आपको अगर एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको एक टाइम पे सीड डालना है. उस सीड डालने से पहले ज़मीन को तैयार करना है. इसका ये सीज़न है ज़मीन की तैयारी का. अगर आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसके बाद सीड डाला जाएगा, फिर उसके बाद खाद दी जाएगी, ज़मीन को पानी दिया जाएगा, सब कुछ होगा टाइम पे, ये सब कुछ किया जाएगा और फिर ये उम्मीद रखी जाएगी कि शायद फसल हो जाए. यकीन फिर भी नहीं होगा. ये है एग्रीकल्चरल, ये है नेचुरल सिस्टम. इसको आप क्रैम नहीं कर सकते, लेकिन आप मैन मेड सिस्टम को क्रैम कर सकते हैं. और इसका ये नतीजा निकलता है कि आप वो जो असल चीज़ें हैं उनको ओवरलुक कर सकते हैं एंड स्टिल गेट थ्रू द सिस्टम. एंड वी हैव ऑल बीन थ्रू इट. ऐसा है ना जी, हमने किया है. और अगर नहीं किया तो देन यू वेस्टेड योर टाइम. देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें, यानी आई कैन टेल यू कि अगर आप इसको पीछे मुड़ के देखें, जो आपने पहले 12 साल की एजुकेशन हासिल की, उसमें से व्हाट इज़ इट दैट यू यूज़ एवरी डे लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्या 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 चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में. आप यकीन करें कि ये मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात थी जब मैं एक टीचर्स के पूरे पाकिस्तान में मैं टीचर्स के ग्रुप्स के साथ ये काम कर रहा था और एक आदमी ने आउट ऑफ ऑल दोज टीचर्स एक दिन खड़े होकर मुझे ये कहा. मैं बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता था कि मुझे ये बताइए कि आप मैट्रिक पास हैं ना, तो सब लोग हंसते थे कि हाँ जी पास है. तो मैथमेटिक्स भी पढ़ा था, हाँ जी मैथमेटिक्स ही पढ़ा था. लॉगरिथम्स पढ़ा था, लॉगरिथम भी पढ़ा था. मैंने कभी किसी ने यूज़ किया उसको, या आपको ये पता भी है कि उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है? तो नहीं पता. लेकिन लॉगरिथम्स किया था और लॉगरिथम्स मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे नंबर लेके पास भी किया था. एक साहब ने जब हाथ उठाया तो आई वॉज ट्रूली सरप्राइज्ड. और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने यूज़ किया. तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या करने में यूज़ किया? तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में. तो दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट. सीरियसली दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट. व्हाट आई मेंट वॉज इन योर लाइफ. ठीक है जी. कभी आपने ये जो इक्वेशंस होती हैं, यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी ये यूज़ की है? हैव यू एवर यूज्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन योर डेली लाइफ? 12 साल की एजुकेशन में आपने क्या क्या यूज़ किया है, लेकिन सारे इम्तिहान पास किए हैं. अगर आज गौर करें तो लर्न कुछ भी नहीं किया होगा. ठीक है जी. वो जो चीज़ें लर्न की हैं उस एजुकेशन सिस्टम से, वो असल में एजुकेशन सिस्टम ने प्लान करके दी नहीं. मिसाल के तौर पे कुछ एटीट्यूड्स लर्न किए हमने. ये हमने लर्न किया है उधर के बड़ों के साथ हमें ज़्यादा देर तक क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. बड़े इरिटेट हो जाएं तो वो ग्रेड ख़राब कर देते होते हैं. ये हमने लर्न की हैं चीज़ें. ठीक है ना जी. नाउ दीज आर द थिंग्स. और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स हैं आपकी. ये मालूम, ये मामूली चीज़ नहीं है. ये दीज आर वेरी सीरियस इशूज़. आइए इस तरफ, रिलीजियस एजुकेशन की तरफ. मैं आपसे अर्ज करूँ, उधर भी ये प्रॉब्लम है. यानी कैरेक्टर डिवेलपमेंट वहाँ पर बुरी तरह से इग्नोर हुई है. कैरेक्टर डिवेलपमेंट से, व्हेन आई से कैरेक्टर डिवेलपमेंट बुरी तरह से इग्नोर हुई है, तो आप कभी गौर कीजिएगा कि रिलीजियस आदमी के लिए अभी हमारी अपनी नेशनल लेवल पर ये फिनोमेनन जब चला, तो हम जानते हैं इसको बड़ी अच्छी तरह से कि कुरान मजीद हमारी ज़ुबान में नहीं है. हम अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत गौर व तदब्बर सीखना पड़ेगा. उसके अच्छे तराजुम हमारे सामने आने चाहिए. ये सारी चीज़ें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जब ये गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड किया जाता है कि हम बच्चों के किरदार की डिवेलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि कुरान पढ़ा दो. दैट इज़ फाइन. कुरान पढ़ा दो, इसको ज़रा डिटेल में लेकर आए, क्योंकि कुरान उतना ही अच्छा पढ़ाया जाएगा जितना अच्छा पढ़ाने वाला होगा. अगर आपकी क्लास में जो टीचर है, मैं लोगों से ये कहता हूँ, आप में से अगर किसी ने टीचिंग की हो तो ख़ास तौर पर, और अगर आपने टीचिंग ना की हो तो स्टूडेंट्स हैं आमतौर पर, ये आप जानते हैं. देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन अ टीचर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू डिलीवर द लेक्चर. ऐसा होता है ना जी ज़िंदगी में, ऐसा बारहा हुआ होगा. अगर आप टीचर हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा. फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकती है और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. लेकिन जो हुआ उसके बाद वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ. आपने अगर इस तरह से क्लास में आप गए हैं और क्लास ली है, तो उस दिन अपने सब्जेक्ट में आपने बच्चों को कुछ नहीं ऐड किया. ऐसा ही होगा ना, बिकॉज आप तैयार नहीं थे. आपने गपशप की होगी, आपने टाइम पास किया होगा, जो कुछ भी किया होगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने उनके सब्जेक्ट के अंदर तो कुछ नहीं ऐड किया, उनके कैरेक्टर में फिर भी कर दिया. इसलिए उनके कैरेक्टर में आप जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होता है. If you are a very conscious person, if you are a conscious parent, if you know कि आपके असरात क्या हो रहे हैं और इनको आप रोक नहीं सकते, तो आप उसके बारे में you will know कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं करनी है, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में I have to be very careful, क्योंकि ये बच्चे ने सीख लेना है। मेरा 1.5-2 बरस का नवासा है और उसके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, लेकिन अचानक आज से 1.5 महीना पहले उसने चीज़, जब उसकी वालदा ने उसको दूध की बोतल पकड़ाई है, तो आगे से उसने कहा EQ, which was his way of saying thank you. And this is, why did he say that? इसलिए क्योंकि उसके माहौल में ये हो रहा है, ठीक है जी। और जब वो उसने वापस किया और वालदा ने कहा कि थैंक यू बेटे, तो उसने आगे से कहा इकम। एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। ये है हमारा अफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रोल मॉडलिंग, कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। ये इसके बाद उसको कुछ सिखा, कोई कभी उसको 1.5 साल के बच्चे को बिठा कर ये बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा जब कोई चीज़ दी जाती है ना तो ये करते हैं, ये वो एटिकेट्स हैं जो महज रोल मॉडलिंग से आप ट्रांसमिट कर देते हैं, महज रोल मॉडलिंग से, फॉर दोज पीपल जिनको के आप इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ दीज थिंग्स, कीप दिस इन माइंड कि मैं जिस वक्त ये बात आपके साथ अब आइंदा फ्राइडेज को शेयर करूँगा, अगर जब तक अल्लाह ताला तौफीक देगा, तो उसमें जो असल चीज़ हमारे पेश नज़र है वो असल में ये नहीं है कि हम अपीयर कैसे होंगे, हमने अपने बिहेवियर्स को कैसे ठीक करना है, वो ये समझने की कोशिश है कि हमारे बिहेवियर्स के पीछे प्रोसेसेस क्या चल रही हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड अस, यू नो, बिहाइंड आवर अवेयरनेस समटाइम्स कि क्या हो रहा है। ये पिछले दिनों मुझे एक बड़ा डिटेल्ड कोर्स अटेंड करने का टाइम मिला, जो बेसिकली मेरी, क्योंकि इसी में दिलचस्पी है कि हम किस तरह से अपने इन प्रोसेसेस से हम अवेयर ही नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि थिंक अबाउट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन योर सेल्फ, जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव चेंज ले आएगी, जस्ट वन थिंग विच यू हैव बीन ट्राइंग टू चेंज लेकिन चेंज कर नहीं पाए, आती है कोई जहन में कोई चीज़ ऐसी? कैन यू थिंक ऑफ सच अ थिंग कि जिसको मैं अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने जो उसमें अपने लिए टारगेट रखा कि मैं इसकी बड़ी कोशिश करता हूँ कि यू नो, और काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता हूँ एज फार एज द ऑडियंस इज़ एन आउटसाइडर। मैं आपसे मिला हूँ, आप मेरे लिए आउटसाइडर है ना, लेकिन अगर यही मेरी औलाद बैठी हो तो मैं नहीं कर पाता हूँ। और ये पता है किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये मैंने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप की है, मैंने अपना कैरेक्टर नहीं डेवलप किया, क्योंकि अगर कैरेक्टर डेवलप करूँगा तो वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, वो एक ही रहेगा, वो असल में मेरे अंदर का रूट है। इसको समझ लीजिए कि हमने असल में आइंदा जो काम करने हैं वो प्राइमरीली अपने प्रोसेसेस को ठीक करने के लिए। मैं आपसे चंद स्किल्स का तारुफ भी कराऊंगा, उनको अगर जो आपके सवालात होंगे उन पे एक्सप्लेन भी करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर आप इसको करना चाहें तो यू डोंट नीड टू अटेंड एनी वर्कशॉप्स, आप खुद अपने ग्रुप्स बनाकर मैं आपको वो प्रोसेसेस भी बता दूंगा जिसमें कि आप एक दूसरे को एनरिच कर सकते हैं अपनी कंपनी से और इसको समझा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इन चीज़ों को सुनकर ना आपकी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना मेरी ज़ात पे पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनको ट्राई आउट करेंगे, अगर आप इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये लाजमन पड़ेगा। आई कैन गारंटी दैट कि पड़ेगा जी। हमारी आउटलुक जो है, हमारी कंडीशनिंग हुई भी है कि हमारी आउटलुक नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है। वी नोटिस मोर ऑफ नेगेटिव्स अराउंड अस। कभी गौर कीजिएगा, याद कीजिए उस टाइम को कि जिस वक्त आपकी रिपोर्ट कार्ड आती थी और पेरेंट्स जो है वो दे वुड आस्क यू टू कम एंड सिट विद देम एंड टॉक अबाउट इट, तो वो दे वुड जनरली फॉरगेट कि आपके अंग्रेज़ी में या मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स आए हैं, और अंग्रेज़ी या मैथमेटिक्स ही में जिसमें 30 मार्क्स आए हैं इस दफ़ा, जिसको आप छुपा रहे थे रिपोर्ट कार्ड के ऊपर उंगली रख के आप दिखा रहे थे, तो उन्होंने देख लिया और कहा कि नहीं है, ये क्यों, वाई इसमें क्यों 30 है। यानी वी हैव जनरली बीन कंडीशन टू लुक एट वॉट इज़ रॉन्ग अराउंड अस एंड वी वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट। लोग ये कहते हैं कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। That's a good paradigm. That's a very interesting paradigm. लेकिन मैं आपके साथ एक different paradigm share करना चाहूँगा कि और भी तरीके हो सकते हैं उसके बारे में सोचने के. यानी why do we need to tell the person's weakness? Have you ever been very comfortable when people were telling you about your weakness? बहुत comfortably आपने सुना होगा, oh yeah, that's a great thing. Now I feel motivated to improve myself. ऐसा नहीं होता जी. वीकनेस इंसान को उसकी नेचर है, ये वो चाहता है कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, लेकिन वो इनकरेजमेंट चाहता है. बड़ी बुरी तरह से इसका कहा है कि मुझे एक ऐसी एनवायरनमेंट मिले जिसमें कि हम सब इनकरेज करें एक दूसरे को. वी अवॉइड शेयरिंग आवर वल्नरेबिलिटीज, है ना जी. ये बात समझ में आ रही है ना. देखिए आपने ये बड़ा बेतकल्लुफी से जिधर कोई वर्ड मैं ऐसा यूज़ करूँ, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब अपनी कमज़ोरियों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते. हम ये चाहते हैं कि अपने आप को ज़रा गनी साबित करते रहें कि नहीं नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. आप जिस तरह लोगों से ये कहते हैं कि जी मैं ये कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, आप यकीन करें कि मुझे जो अक्सर रिस्पॉन्स मिलता है तो वो कहता है कि जी आई थिंक माई वाइफ रियली नीड्स इट. I really think that my people, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो 300 लोग हैं, इनकी बड़ी ज़रूरत है ये काम करवा दें आप इन्हें. तो मैं उनसे पूछता हूँ कभी आपने नहीं सोचा ये? तो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है. उनके पास है, मेरे पास नहीं है. नहीं नहीं, असल में जो वो कहना चाह रहा है वो ये है कि नहीं उनकी ज़रूरत है, मेरी है नहीं. मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल से. मैं मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह को फेस करने के लिए तैयार हूँ. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इसकी इसकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं चाहता था. आई एम वेरी सॉरी आई हैव टेकन मोर टाइम देन आई थॉट. मेरा ख्याल है कि इसको 15 मिनट से ज़्यादा कर लें हम थोड़ा सा, क्योंकि आइंदा अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा तो दे माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर. आधे घंटे से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा जी. अच्छा जी, मेरी जो गुजारिशात हैं मैं उसका बिल्कुल चंद वर्ड्स में खुलासा कर दूँ. थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्ला. बस बिल्कुल ब्रीफली, वन थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर इज दैट कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेट्स टू माई अपेयरेंसेज. जो कुछ आपके सामने है ये मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा किरदार आपके सामने नहीं है. लेकिन अगर हम इसको लेट से ये 2 साल ये सेशन करते रहें और इन पर्सन करते रहें ख़ास तौर पर, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इन पर्सन करते रहें तो आपके सामने कुछ मेरे कैरेक्टर ट्रेट्स भी आ जाएंगे. बड़ा ही बेसब्रा आदमी है भाई, हर वक्त अपनी बात को डिफेंड करने के चक्कर में रहता है. यू नो ये सारे मेरे कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे कि मैं अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता. ठीक है जी, मैं असल में हर कमेंट का जवाब दिए बगैर रहता नहीं हूँ, चाहे वो किसी ने मोहब्बत से ही किया हो. ठीक है ना जी, ये जो एस्पेक्ट्स जब आपके सामने आएंगे तो मेरी पर्सनैलिटी पीछे रह जाएगी. आपने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी में जो बड़े बड़े रिलेशनशिप्स हैं, जो बड़े कंसिस्टेंट और बड़े परमानेंट रिलेशनशिप्स हैं आपके, उनमें आपको ट्रस्ट ज़्यादा किया जाता है या उनमें ज़्यादा किया जाता है जिधर आपका थोड़ी देर का ताल्लुक होता है? Now these are very important questions for us to consider. Keep this in mind. क्योंकि मैंने जब उसमें ये लिखा ना अपना इम्प्रूवमेंट गोल, तो उसमें मैंने ये लिखा कि अगर मेरा स्केड्यूल कोई डिस्टर्ब कर दे, मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, मैंने ये ख्याल है कि मैंने आज ये काम कर लेने हैं, और अगर मिसाल के तौर पर कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई टेलीफोन कॉल डिस्टर्ब कर दे, तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब होता है, और अगर मेरे घर वाला कोई डिस्टर्ब कर दे तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मैं टेलीफोन कॉल पे क्या करूंगा, मतलब मैं उसको गालियां देनी शुरू कर दूंगा? नहीं नहीं, ये तो पर्सनैलिटी के खिलाफ है ना. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग. पीपल विल नो कि असल में क्या हूं मैं, लेकिन घर वाले बेचारे क्या कर लेंगे ये. दिस इज, बट आई शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज व्हाट माय कैरेक्टर इज. तो हमने इसमें कोशिश ये करनी है जी कि इस चीज को जहन में रखें, नॉट अबाउट हाउ आई अपीयर, कितना अच्छा या बुरा हूँ मैं देखने में या बात करने में, या नहीं मुझे, मैं अंदर से कैसा हूँ और मैं अंदर से कैसे बेहतर हो सकता हूँ. और इस मामले में ना तो मैं आपका टीचर बनूंगा यहाँ पे, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस फील्ड के अंदर मैं टीचर बनने का शायद अहल ही नहीं हूँ. जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो चीज़ मैं जिसमें मैं आपको इन्वाइट करूँगा वो ये है कि मैं एक सफ़र करना चाहता हूँ अपने अपने लिए, और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बी माय कंपेनियंस, बिकॉज आई नीड कंपेनियंस. मुझे वो साथी चाहिए, सीरियसली चाहिए, कि जो मुझे ये बता सकें कि यहाँ पे फिर तुम स्लिप कर गए, और खैर खाई से बता सके. यू नो, मुझे ये पता हो कि आप जाकर एडवर्टाइज नहीं करने का कोई जज्बा रखते कि यार ये देखो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात, नहीं नहीं ये मकसद नहीं है. हम सब मोहताज हैं एक दूसरे की मदद के, और इस एहतियाज की हम एक दूसरे के लिए पूरा करें जी. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट. मेरी कोशिश ये होगी कि आइंदा विद इन दिस टाइम हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें, ताकि आप बेधड़क डेढ़ घंटा जो है फिर उसका सवालों जवाब या कोई भी कमेंट या कोई भी बात करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. जज़ाकल्लाह जी.
थैंक यू सो मच सर. माय नेम इज़ हमज़ा एंड आई एम फ्रॉम GCU लाहौर. सो मेरा सवाल दरअसल आपकी जो डिस्टिंक्शन है कि आप पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट और कैरेक्टर डिवेलपमेंट में जो पैरल्स ड्रॉ करते हैं, तो एक और चीज़ हमारे यहाँ बड़ी कसरत से मिलती है, हमारी बुक स्टोर्स पर बड़ा उसका एक योनरा आजकल बड़ा आम होता है, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन का. और हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसके ऊपर बड़े काम कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए तो वो इट्स वेरी टाइमली द इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशन. आप इस तरह से कुछ चीज़ें पढ़ के अपने आप पे अप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें जो होती हैं आपसे छूट जाती हैं और इस तरह से. तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर डिवेलपमेंट, और वट डिफरेंट आर वी गोइंग टू डू और वी गोइंग टू यूज इन दिस मैथडोलॉजी जो आपकी है, कि जिसमें हम ये चीज़ कर सकेंगे. थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच जी. देखिए, एक तो चीज़ ये कि सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो भी सेल्फ हेल्प का पूरा योनरा ही, इनफैक्ट वो भी जो है, अगर आप कभी उस पर बहुत ज़्यादा अंदर जाकर कोशिश करें, मोस्ट ऑफ देम रिलेट टू पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, मोस्ट ऑफ देम. एज फार एज मोटिवेशन इज़ कंसर्न्ड, वो मैं आपके साथ एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ जिससे बात वाजे हो जाए. मैं वज़ीराबाद सेशन कर रहा था एक, और मेरे से पहले एक स्पीकर थे, और इसके बाद मैं वहाँ पे पहले भी कर चुका हुआ था, तो मेरे जो होस्ट थे जिन्होंने बुलाया, तो इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने ऑडियंस से ये कहा कि आपके जाने पहचाने मोटिवेशनल स्पीकर मोइज़ अमजद साहब. मैं कहा जी कि देखें, मैं इस इल्ज़ाम से अपने आप को बरी करार देना चाहता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ. ठीक है जी. और वेरी ऑनेस्टली विदाउट एनी डिसरिगार्ड टू एनी बडी जो कि सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने बड़ी सही बात फरमाई है, मैं इससे एग्री भी करता हूँ, और यही मैंने उधर सवाल भी किया कि मोटिवेशनल स्पीकर असल में कोई भी नहीं होता. मोटिवेशन या तो आपके अंदर होती है, या आप टेम्परेरली मोटिव इंस्पायर हो जाते हैं किसी बात से, और मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि मैं आइंदा ये करूँगा, और फिर उसके बाद तकरीर ख़त्म हो जाती है. ठीक है जी. और मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है. तो ये बेसिकली शोला बयानी जिसको आप कहते हैं, मेरे ख्याल में शायद ये मेरे पास आपको नहीं मिलेगी जी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट ऑफर दैट, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्पीकर. आई एम नॉट दैट गुड अ स्पीकर. इनफैक्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर. आई वॉन्ट टू बी अ गुड फैसिलिटेटर, जिसमें कि मैं आपकी बात ज़्यादा सुन सकूँ. ये मेरी ज़िंदगी की एस्पिरेशंस ये नहीं है कि मुझे एज अ स्पीकर याद किया जाए. मेरी ज़िंदगी की एस्पिरेशंस ये हैं कि मैंने अल्लाह ताला की इजाज़त से कुछ ज़िंदगियों में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन पैदा की. ठीक है जी. और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह नहीं पैदा होती है कि मैं आपको बताऊं कि देखो क्या, यू नो, नॉट लाइक दैट. आई कांट डू दैट. मैं तो ये बता सकता हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप मोटिवेटेड हैं, उनको कैसे चैनलाइज करें. यानी आप हो सकता है उन चीज़ों के बारे में कोई मोटिवेशन ना महसूस करते हैं जिनके बारे में मैं करता हूँ. आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं. ठीक है जी. मे बी यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन वेट लॉस, नॉट एट लीस्ट नॉट विद योर फिजिक, यू डोंट नीड टू बी. मे बी यू आर रियली मोटिवेटेड अबाउट बींग फिट, और मे बी यू आर रियली मोटिवेटेड अबाउट बींग मेंटली फिट. लेकिन देर कैन बी पैरेलल्स जो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंने अगर फिटनेस एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक तरीके से करनी है, तो क्या उसका क्या तरीका हो सकता है. तो मैं जो कोशिश करता हूँ जी मेरे अपने सेशन में जो बात होती है, ये जो मैंने आज यहाँ पर किया कि हम 15-20 मिनट की बात करेंगे, और फिर यही मेरे सेशन में होता है, यानी 15-20 मिनट में एक बिल्कुल ब्रीफ सा, बिल्कुल छोटा सा तारुफ करा दिया जाता है उस टॉपिक का कि जिस पर हमने बात करनी है, और इसके बाद लोग उस टॉपिक को आपस में डिस्कस करें। लर्निंग इस तरह होती है, लर्निंग मेरे बताने से नहीं होगी आपकी, ये हो नहीं सकती जी। दिस इज समथिंग विच इज ट्रूली अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी हमारी, जिस बेसिस पर स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, वो ये है कि मैं अगर जानता हूं तो मैं अपनी लर्निंग आप में उंडेल देता हूं, ठीक है जी, और अब आपने लर्न कर लिया है। चुनाचे देखिए होता क्या है, मेरा सारा फोकस टीचिंग पे होता है, इंस्टीट्यूशंस का भी सारा फोकस टीचिंग पे होता है, और वो ये पूछते हैं टीचर से, क्यों जी कोर्स कवर हो गया? और कोर्स कवर हो जाने का मतलब ये कि बच्चों ने सीख लिया है। आप बताएं क्या ये वाकया है, क्या ऐसा ही होता है? कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोर्सेज कवर हुए हुए 2 साल हो गए हुए लेकिन सीखा अभी शुरू नहीं किया सीखना, अभी करेंगे इंशाल्लाह, अभी द लर्निंग इज येट टू स्टार्ट। इसलिए क्योंकि लर्निंग आपने करनी है, मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं लर्निंग को, मेरी शोला बयानी आपको लर्निंग दे नहीं सकती। ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो सेल्फ हेल्प इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन, primarily, I won't say totally, but primarily focusing on personality development, how to be more, how to appear more receptive, for instance. Motivation तो बिल्कुल ही मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ जी, कि there can be anybody who can, motivation एक internal चीज़ है। देखिए मैं मिसाल के तौर पर लोगों के motivation करने के, motivate करने के तरीके क्या हैं, मसलन बच्चों के साथ punishment and reward, और सेम विद द केस ऑफ एल्डर्स, वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि चांटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा से, और बड़ों को मोटिवेट करते हैं इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी से, ठीक है जी, फ़र्क इसमें कुछ नहीं है, यानी ये पनिशमेंट हो या रिवॉर्ड हो, ये असल में एक ही चीज़ के 2 साइड्स हैं। हम किस तरह से बच्चों की इंटरनल मोटिवेशन समझ सकें, मैं आपको सीरियसली एक चीज़, आपको ADHD का तो पता ही होगा ना, ADHD एक प्रॉब्लम है, यानी इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये आपको हैरत होगी कि मेरे से कई लोगों ने इस पाकिस्तान में मुझसे ये कहा कि हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों को ADHD है। तो मैंने कहा खुदा का खौफ करें, मतलब इतनी कॉमन चीज़ नहीं है ये ADHD के हर दूसरे घर में हो, तो नहीं वो उसको बिल्कुल अटेंशन स्पैन ही नहीं है, कोई है ही नहीं, अटेंशन स्पैन ही नहीं। मैंने कहा अच्छा वो कोई काम अपने इंटरेस्ट से करता है? हाँ अपने इंटरेस्ट से तो करता है, पढ़ने में कोई अटेंशन स्पैन नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। आप पढ़ सकते हैं बगैर इंटरेस्ट, मैं आपसे सबसे ये कहता हूँ, आप सब मेच्योर लोग हैं ना माशाल्लाह, मैं आपको कहता हूं कि आइए मैं आपको अरेंज कर देता हूं स्पेनिश सीखना, कितने लोग कितनी देर तक मोटिवेशन से सीख सकेंगे? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं, इसलिए क्योंकि वाई यू डोंट सी एनी कनेक्शन ऑफ स्पेनिश विद योर लाइफ। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि देखिए देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 50 लोगों की बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है स्पेन में, बड़ा लुक्रेटिव काम है, 6 महीने के अंदर अंदर स्पेनिश सीख लें, Everybody would probably be interested now. Now you develop a connection. आपने बचपन से लेकर अपनी 12वीं 13वीं जमात तक जो कुछ पढ़ा है मैंने अभी बताया आपको, उसका कोई कनेक्शन नहीं आपकी जिंदगी से, why would you be interested in studying that at all? मेरे लिए तो सवाल ये है। अभी पिछले दिनों किसी ने मेरे से ये कहा कि वो बाज बच्चे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा असल में मेरे लिए प्रॉब्लम वो है कि उनको कैसे पैदा हो गया इंटरेस्ट, मतलब उनको आपने ये डेवलप कर दिया उस एज में कि मैं अपनी पूरी शख्सियत को ख़त्म करके पढ़ लेता हूँ, ना तो इसका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक है, ना मैंने इसको कोई यूज़ करना है। हर स्टेज पे अपने कोर्स के बारे में मैंने ये सुना और आपने भी सुना होगा कि ये अगली क्लास में यूज़ होगा, बस और कुछ नहीं, ये अगली क्लास में यूज़ होगा, और जो अगली क्लास में पढ़ना है वो उससे अगली क्लास में यूज़ होगा। यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाके शायद इस तरह की बात हुई हो कि ये शायद ज़िंदगी में भी कभी यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना जी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रेजेडी, और अगर इस एजुकेशन सिस्टम में किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो काबिल-ए-सताइश बच्चा है। होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना जी। वो कोई सोचने समझने वाला बच्चा है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी जो मैं पढ़ूँ को मकसद चीज़ पढ़ूँ। यू सी, टेक इट द अदर वे अराउंड। हम ABC पढ़ाते हैं, आप पहली लेवल से शुरू कर लें, ABC पढ़ाते हैं। ABC को आपके ख्याल में वो जो 3, 4, 5 साल का बच्चा है उसको पता है, अच्छा मैं ABC सीख रहा हूँ, इसके बाद मैं वो नॉवेल्स पढ़ा करूँगा, ऐसे ये होता नहीं। आप उसको कहानियों से शुरू करें, स्टार्ट बैकवर्ड्स। नाउ ही विल नो कि मैं ABC क्यों सीख रहा हूँ, ही विल, इट विल बी सेंसिबल फॉर हिम टू डू इट। आप जब चीज़ें सेंसिबल हो जाती है ना, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उनको सीखने का, ऑटोमेटिकली हो जाता है यार, अच्छा इससे मुझे समझ। आपका इंटरेस्ट है जहाज़ बनाने का, अब आप इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मैं देखूं कि क्या चीज़ होती है, कि क्या वो एरोबिक्स क्या चीज़ होती है, ये यू नो सारी जो एरोनॉटिक्स क्या चीज़ होती है, यू बी इंटरेस्टेड। लेकिन आपको जिस तरफ से पढ़ाया जाता है, लॉगरिथम सीख लें, नहीं आपको एक बड़ी लेवल की कैलकुलेशंस करनी है, उसके बाद आपको बताया जाए कि इसका एक तरीका ये होता है, नाउ यू इट विल मेक सेंस टू यू, अच्छा ये तरीका है। ये एप्लीकेशंस हैं जी इंफॉर्मेशन की। आई बिलीव दैट मोटिवेशन हम सब में है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और हम भी कोशिश करते हैं कि, और एक चीज़ नहीं है, हम एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं होते, हम एक्सटर्नली थोड़ी देर के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। ये मैंने यही पूछा था जो आपने कहा था, जो अभी आपने फरमाया है कि थोड़ी देर के लिए आदमी मोटिवेटेड फील करता है और फिर उसके बाद बैठ जाता है। मैं अपनी क्लास में पूछा था, आप किसी मोटिवेटेड स्पीकर को जानते हैं? तो उन्होंने कहा जानते हैं, उन्होंने नाम भी लिए कुछ। मैंने कहा आप यू फील मोटिवेटेड लिसनिंग टू हिम? उन्होंने कहा जी बहुत। मैंने कहा वो मोटिवेशन कब तक रहती है? तो इस पर वो मुस्कुरा दिए, जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही, यानी दैट वॉज इट। यानी मोटिवेशन स्पीकिंग ख़त्म होती है, मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल, ठीक है। दैट्स नॉट कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि आपको ये समझ आनी शुरू हो जाए कि मैं किस चीज़ से मोटिवेट होता हूँ, मेरी मोटिवेशन किधर है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन मेरी क्या है, जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए जब मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ, इससे बात शायद वाजे हो जाए। जब मेरी मजहबी ज़िंदगी ईमान से फूटेगी तो किसी को चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक अदा कर रहा हूँ, नहीं, मेरी मोटिवेशन अपने ईमान से आ रही है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर ये मेरी मोटिवेशन अपने वालिदैन के खौफ से पैदा हो रही हो, तो फिर जब तो फिर एक प्रॉब्लम है, फिर जब तक मेरे वालिदैन हैं तो ये खौफ भी है, या जब तक उनकी नज़र है उस वक्त तक है। मेरे से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर मोटिवेट किया है सज़ा और जज़ा से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे इसके मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं इस पर, हम जब पहुंचेंगे इधर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे तो हम ज़रूर डिटेल से बात करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट अल्लाह ताला के ऊपर जब आप ईमान ले आते हैं, तो आप इस डेस्क के नीचे घुस के भी कुछ कर रहे हो तो आपके दिल में ये ख्याल आएगा कि मेरे रब की नज़र में हूँ मैं, वालिद साहब के बारे में ये ख्याल नहीं आएगा। इस डेस्क के नीचे आप वालिद साहब से छुप के जो मर्ज़ी कर लें, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं वालिद के रिवॉर्ड और पनिशमेंट के खौफ से अपने अंदर चीज़ पैदा करूँ। लोग ये कहते हैं मुझे, बहुत दफ़ा ये बात हुई है कि नहीं आदत पड़ जाती है ना। फिर टर्की में एक रिवायत है कि एक बच्चा जो है उसको आप जब वो 7 बरस का 8 बरस का 9 बरस का हो जाता है तो पेरेंट्स की तरफ से उसको ये कहा जाता है कि अगर वो 40 दिन तक रोज़ फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुँचेगा और नमाज पढ़ के वापस आएगा तो 40 दिन के बाद उसको बाइसिकल मिलेगी, इट्स अ रिवॉर्ड, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि इसके नतीजे में उसको आदत पड़ जाती है, इसके नतीजे में उसको आदत पड़ जाती है। ये उसका इंटरनल प्रोसेस है जो आप जान ही नहीं सकते। ये कभी वो आपके साथ शेयर नहीं करता, आपने ये गुंजाइश नहीं रखी। उसका इंटरनल प्रोसेस ये भी बन सकता है कि अब अगले 40 दिन के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि नमाज की इंट्रिंसिक वैल्यू तो है कोई नहीं। नमाज मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये मुझे मेरे रब से जोड़ती है, नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि एक साइकिल मिलेगी। और ये याद रखिएगा हमेशा, रिवॉर्ड हमेशा एक्टिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, वरना वो रिवॉर्ड ही नहीं होता। ये बात समझ में आती है आपको? यानी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप नमाज का रिवॉर्ड दे रहे हैं ना, तो फिर आपने असल में ये एक साइलेंट मैसेज भी कम्युनिकेट किया है बच्चे को कि नमाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है, वरना तो मोटिव मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ज़रा आप में से कौन है जो अल्लाह का बंदा जो मुझे इस्लामाबाद छोड़ा है 10 रुपये दूंगा? तो कोई भी अकेल ऐसा नहीं करेगा। मैं आपसे कहता हूँ मुझे इस्लामाबाद छोड़ा है 1,00,000 रुपये दूंगा, नाउ यू विल फील कि इस्लामाबाद जाने की जो पेन है उससे बड़ा है ना रिवॉर्ड, तो अब आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, यू विल बी इंटरेस्टेड। अच्छा जी, मैं अगर इजाज़त हो तो मैं ये दीज अ क्वेश्चन जो मुझे वो दे रहे हैं, वो कहते हैं जी आई एक्सेप्ट कैरेक्टर डिवेलपमेंट इज वॉट इज गोइंग ऑन इन मी, बट डोंट यू थिंक टू वेयर नाइस क्लोथ्स एंड टू फॉलो स्पेसिफिक फैशन अफेक्ट आवर इनर सेल्फ एज वेल? येस, इफ आई एम डूइंग इट बाय माई मोटिवेशन, मिसाल के तौर पर मेरे एक्शन जो हैं, जब मैं एक्ट करूँ, मैं जब ये कहूँ कि मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह से करीब होने के लिए, तो मैं यकीनन होऊंगा। लेकिन अगर मैं नमाज पढ़ूं सोसाइटी के या खुदा के या अपने वालिद साहब के प्रेशर में कि अल्लाह से करीब होने के लिए नमाज पढ़ो, तो इससे मैं वालिद साहब के ही करीब होऊंगा, अल्लाह के करीब नहीं होऊंगा जी। यानी मैं इससे एग्री करता हूं कि बाज़ औकात आपके इंटरनल प्रोसेसेस आपके बिहेवियर्स मॉडिफाई करते हैं, लेकिन वो बिहेवियर आपके अंदर से एमिनेट करने चाहिए। आपने ये फैसला किया कि मैं, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हर रोज सुबह नाश्ता करने से पहले नहा धोकर सूट पहनकर टाई लगाकर मेज से बैठ जाते हैं, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो कपड़े उतार के सलवार कमीज पहन के फिर सो जाते हैं। फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। देखिए, इसके नतीजे में एक फॉर्मलिज्म पैदा होती है जिंदगी में, वो अपने ऊपर ये चीज़ रखना चाहते हैं, एक एटिकेट, यू नो, मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही चीज़ आप अपने बच्चे से कह दें और उसको इस पर फोर्स करने लग पड़े, तो जो वो फॉर्मलिज्म पैदा करना चाहते हैं वो इसी हद तक पैदा होगा कि वो आपको खुश करता रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि चाहे वो सोसाइटी के प्रेशर से हो रहा है, चाहे वो माँ बाप के प्रेशर से हो रहा है, जो चीज़ आप बज़ाहिर अपने ऊपर तारी कर रहे हैं वो आपकी अंदर के प्रोसेसेस पर वो असर नहीं डालेगी जो आप चाहते हैं कि वो डाले, अनलेस कि ये आपके अंदर से फूटे कि ये मैं खुदा के करीब होने के लिए नमाज पढ़ता, मैं खुदा के करीब होने के लिए रोज़ा रखता हूँ। ये जैसे ही आपका ख्याल यहाँ से पैदा होगा ना, तो आपका रोज़ा रखना भी आपको खुदा के करीब करेगा। लेकिन ये मैंने, यार मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी वालदा कह रही है कि रोज़ा रखना, इससे नहीं वो पैदा होगा, इससे बस कुर्बत वालिदा के साथ ही होगी। ठीक है जी, ये अच्छा, ये और भी हैं इधर से, कोई अगर कोई बात करना चाहेंगे। जी जी,
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। मेरे दो क्वेश्चन हैं, पहले एक बुनियादी सवाल, वो ये है कि मसलन ये जो गुड करैक्टर है या बैड करैक्टर है, ये करैक्टर है, ये सोसाइटी डिफाइन करती है या कोई डिवाइन रूल्स हैं, यानी खुदा की तरफ से या किसी मज़हब की तरफ से? क्योंकि एक मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, कहीं कहा जाता है कि भाई किसी ने एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे मारा है, तुम दूसरी गाल भी उसके आगे कर दो, ये एक अच्छा किरदार है। उसको कहा जाता है किसी ने एक थप्पड़ मारा है, तुम्हारा ये रोब होना चाहिए कि तुम उसे भी, उसे यानी इतना होना चाहिए तुम्हारी शख्सियत के अंदर कि तुम उसे भी एक मार सको, ठीक है? तो फिर यानी क्या डिफाइन, सोसाइटी डिफाइन कर रही है या उसमें गुड क्या है बैड क्या है, इसके बारे में कुछ बता।
एक एक करके जवाब दे दूँ मैं, ये एक ही सवाल आपने किया ना। ठीक जी, और ये अच्छा किया कि एक ही किया, मैं आमतौर पर मेरा हाफजा एक ही का मुतमिल हो सकता है जी। जो एक बात तो ये समझ लें कि ये जो कैरेक्टर है ये असल में सोसाइटी नहीं डिफाइन करती जी, इसलिए क्योंकि सोसाइटी इसको जज कर नहीं सकती। मिसाल के तौर पर ये वो वैल्यूज़ या वो प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल जब मैं कहता हूँ तो बेसिकली दे आर कॉमन इन ऑल सोसाइटीज़ एंड ऑल रिलीजन्स। मुझे उन लोगों की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जो ये कहते हैं कि तमाम मज़हब एक ही चीज़ सिखाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि क्या सिखाते हैं, तो वो आपको यही प्रिंसिपल्स बताएंगे। कोई मज़हब भी ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, कोई मज़हब भी ये नहीं कहता कि बेईमानी करो, इसलिए क्योंकि ये वो मज़हब सिखाता ही नहीं, मज़हब नहीं ये सिखाता, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी कॉन्शियंस में पड़े हुए हैं। मज़हब अगर इसके ख़िलाफ़ कुछ करे तो मज़हब एक्सेप्टेबल ही नहीं रहेगा। यानी आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखें कि मज़हब आके ये कहे कि ये जो मुतफ़िफ़ीन है ना, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, जब अपने लिए तुलवाते हैं तो खूब ठीक ठीक तुलवाते हैं, जब दूसरे के लिए तोलते हैं तो हमेशा कम करते हैं, ये मज़हब तो एक्सेप्टेबल ही नहीं रहेगा। ये तो वो प्रिंसिपल जो मेरे अंदर मौजूद है जस्टिस का, इक्वालिटी का, ठीक बात करने का, ये उसको तोड़ रहा है। चुनाचे مثال کے طور پر سوسائٹی یہ ڈیفائن کر دے گی کہ آپ کو بیہیو کیسا کرنا ہے, آپ کو تھینک یو کہنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ سوسائٹی ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ تھینک یو کہو تو تھینک یو فیل بھی تو کرو, کیونکہ اگر میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ تم نے تھینک یو کہنا ہے وداؤٹ فیلنگ تھینک یو, وداؤٹ فیلنگ گریٹفل, تو تم اصل میں انٹیگریٹی کے خلاف کر رہے ہو معاملہ. میں اپنے بچوں کو کبھی غور کیجیے گا کہ یہ سکھاتا ہوں نا کئی دفعہ اپنے بچوں کو, اگر آپ کی اولاد نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا, اور یعنی اس وقت یہ نہ کیجیے گا. ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں جاؤ جا کے سوری کہو. دا چائلڈ از ناٹ فیلنگ سوری بٹ ہی از گوئنگ ٹو سے سوری. تو دا چائلڈ از گوئنگ ٹو لرن ٹو بی اے پرسن وداؤٹ انٹیگریٹی, کہ ٹھیک ہے کہہ دو کیا ہے, کہنا ضروری ہے. تو سوسائٹی وہ جو پیرنٹس ہے وہ سکھاتی ہے, ٹھیک ہے جی. سوسائٹی بیسیکلی ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتی کیونکہ دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جو آپ کی بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میرا جواب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مثلاً وہ فگیونیس کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, فگیونیس کا, ٹھیک ہے جی. وہ کمپیشن کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, اس کے بارے میں کہیں پہ کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. اور میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ اس کے بارے میں ڈسٹارٹڈ مذہبی انٹرپریٹیشن ہمیشہ پرورژن کریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ رسل نے ایک جگہ پہ بات کی ہے, خالد ظہیر صاحب کی فیوریٹ چیزوں میں سے ہے یہ, میں انہی سے میں نے سنی. میں نے رسل کو بہت پہلے پڑھا تھا, مجھے اب وہ یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو مجھے کچھ کچھ یاد آتا ہے کہ ہاں ایسا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ دیر آر گڈ پیپل ان سوسائٹی اینڈ دیر آر بیڈ پیپل ان سوسائٹی. The good people do good things, the bad people do bad things. But the power of religion is such that it can make the good people do the worst of things. Perverted جو religious interpretation ہے وہ یہ کروا دیتی ہے ہم سے. یعنی جو مثال کے طور پر ہم compassion less ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے اندر لوگوں کی محبت ختم ہونا شروع ہو جائے. یہ دیکھیے, یہ وہ universal principles ہیں کہ جب آپ کی جب آپ سے کہا جائے کہ نہیں تمہیں تو ان سے نفرت کرنی چاہیے, مذہب تم سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرنی چاہیے, اب نفرت کرنے مجبور ہو گئے. اب آپ کیا کریں, دل میں تھی, اللہ نے رکھی تھی, لیکن وہ جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوگی. دیکھیے, یہ جو بات ہے نا کہ تمہیں کفار سے نفرت کرنی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو بتائی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتائی ہے کہ ان کے خلاف بڑے سخت ہو جاؤ. یہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتائی کہ جو میرے سے یا میری انٹرپریٹیشن سے اختلاف کرتے ہیں. دیر از اے بگ پرابلم ہیئر. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اینڈ دیر از نو ناٹ مچ ڈفرینس, یہ جس چیز کو ہم کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ مزید کھل کے سامنے آ جائے گی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جی. میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اگر موقع ملا, نیکسٹ میں تو مشکل ہے لیکن مے بی ان دا نیکسٹ کپل آف سیشنس آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گا کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسل پرنسپلز ہیں. پھر غور کیجئے گا کہ آپ اس میں اگر ہیلپ کریں میری اور اس میں کوئی اضافہ کریں تو آئی ول بی ویری گریٹفل. کہ یہ جتنی بھی ابھی تک میں نے دیکھی ہیں چیزیں اس سے یہ نکلتے ہیں, وہ اگر 10-12-15 کے قریب ہیں وہ, اور ان کے اوپر اگر ہم کھڑے ہیں اس کا طریقہ بھی ہم شیئر کر لیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کھڑے ہوا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی میں آپ کا سیکنڈ آگے کر لوں جی. یہ ہے جی نیکسٹ کوشچن یہ جی کہ وی کانٹ ہائیڈ آور کیریکٹر ایٹ ہوم بٹ وی آر ایبل ٹو ہائیڈ اٹ ان سوسائٹی فار لانگ ٹائم اور اٹ ڈز ریویل ان سم ٹائم. یس اٹ ڈز, اٹ ڈز سم ٹائمز, اٹ ڈز گیٹ ریویلڈ. اینڈ بیکاز سم ٹائمز وین دا آبزرونگ پیپل کین گیٹ ٹو آبزرو اس ان ڈیفیکلٹ ٹائمز, اور ان ڈیفیکلٹ ٹائمز مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشکل میں پڑے, پھر دوسری میں پڑے, پھر تیسری میں پڑے, یہ آپ کے باس بیٹھے تھے ساتھ, تو کافی برداشت کر لیں گے آپ, کافی آپ کی وہ باس بیٹھے نا, آپ کا جو لیول ہے ٹالرنس کا وہ کافی ہائی ہوگا, لیکن بہرحال لیول ہی ہوگا. تو اگر اس سے آگے گزر جائے گی بات تو پھوٹ پڑے گا. وہ میں اس کی مثال دی تھی ایک دفعہ کہ کبھی آپ نے کوکا کولا کی بوٹل لے کے اس کو ایسے سے کر کے نا اس شیک کر کے تو اس کو کھول دیں, تو وہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے وین یو آر ریئلی سپریسنگ یور ایموشنز. کیونکہ یہ بات رکھے ذہن میں unless your internal processes are regulated, emotions badhti chali jati hain, badhte 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 phat jati hain, aur wo fir un logon ke samne bhi phat sakti hain. This is the danger. Allah Ta'ala parde dale rakhe hum sab ki galtiyon khataon par, lekin bahrhal ye ek aisi cheez hai jiske upar hame zyada muhtaat hona chahiye. Ji, aapka next question. Aap
बहुत शुक्रिया. मैं भी जब ये करेक्टर के बारे में सोचता हूँ और ये जब सारी बातें एनालाइज करता हूँ, जिस तरह हमें वो आगे लग रहा था कि मोटिवेशन स्पीकर सुनो ना, सुनता है यार ये कहानी सुना रहे हैं, बाहर की चीज़ है बस, हम इसको प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते. यू कैन डू एवरीथिंग, ये जो इस तरह के सेंटेंसेज हैं. अब ये करेक्टर के बारे में भी सुन के मुझे ऐसे लगता है कि जब हम गुड करेक्टर की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि बंदा साइंस हाँ बन जाता है जिस तरह ना, बस वो माशरे के अंदर. अब कुछ देर के लिए मैंने क्लास में या किसी बाहर जगह जाके बिहेव करना है तो मैं अच्छा बिहेव कर लेता हूँ. अब एक मिसाल दे देता हूँ, जिस तरह एक हॉस्टल्स के अंदर रूममेट्स हैं, ठीक है. अब आप कहते हो यार मैंने एक ना एक अच्छी जगह खड़ा हूँ मैं अखलाकी तौर पे, अब वो आपका यानी मैट्रेस भी यूज़ कर रहे हैं, आपके कपड़े भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी बाइक भी, यानी जो भी उनके हाथ लग रहा है वो रहता है. सीनियर्स हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है, ठीक है. अब वहाँ एक बंदा कहे कि नहीं यार मेरे पास ये टीचिंग है या मैंने इस तरह से रहना है, फिर वो यानी आप मेरे पास कुछ अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, तो ये उस तरह से आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते या जो मैंने बताया कि आप, तो फिर वो कहेंगे यार ये तो सही है इसकी करो, फिर इस तरह से आगे भी यानी खर्चा भी आपका हो रहा है ये सारे मामला, फिर उसको किस तरह से आप देखते हैं?
नहीं ये कैरेक्टर नहीं ये मुराद नहीं है मेरी, यानी साई बनना मुराद नहीं है. मतलब इफ दिस इज द इम्प्रेशन दैट आई एम गिविंग यू, आई एम रियली वेरी सॉरी. इंटरेस्टिंग. देखिए आपके पास इसकी गुंजाइश है कि आप चाहें तो यू अलाउ पीपल कि आपकी तरफ से उनको फैज मिल सकता है तो दे दें, जितना आप चाहते हैं उतना ही दें. यानी ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नॉट लेट पीपल टेक यू फॉर अ राइड. ये मकसद, ये कैरेक्टर नहीं है, ये तो वीकनेस है. कैरेक्टर तो स्ट्रेंथ है हमारी. कैरेक्टर बेसिकली ये नहीं है कि मैं अब चलो जी कर लो फिर वो वाली चीज नहीं है, ठीक है जी. कैरेक्टर का मतलब ये है कि मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर बात है तो नहीं, आई एम सॉरी दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, मैं ये नहीं करना, मैं ये इसको गलत समझता हूँ, ठीक है ना जी. यानी वो मैं अगर ये इंप्रेशन मिला है तो ये नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये. लेकिन देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगहों पर आपको ये महसूस होगा. मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए किसी आदमी के बारे में अगर आपकी राय है कि वो धोखा दे रहा है तो ये आपकी राय है, पहले इस राय में गलती का इम्कान तो माने ना. अच्छा, और अगर ये उसने वाजे नहीं किया, अभी आप पर वाजे नहीं है, तो फिर थिंक अबाउट इट कि इसमें एक बदजनी भी शामिल है. अच्छा, और पता ये चले बाद में कि वाकई धोखा दे दिया, अब उसके साथ बात तो करें. यानी कैरेक्टर बेसिकली फेस करने का नाम है, कैरेक्टर अवॉइड करने का नाम नहीं है. लेकिन कुछ गलतियां हैं मेरे अंदर. मिसाल के तौर पर मैं बैठ के जब भी तन्हा बैठता हूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल. कभी गौर किया, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, है ना जी. बैठते हैं, चलें बातें कर लें, और कुछ नहीं तो अपने किसी टीचर के बारे में बात कर लें या स्टूडेंट के बारे में. वी इन्जॉय डूइंग दैट. मैं लोगों से जब पूछता हूँ ना ये स्टाफ रूम में टीचर से बात करते हुए कि मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट गुफ्तगू स्टाफ रूम में क्या होती है, तो लोग हंस पड़ते हैं. दैट इज़ गुड इनफ आंसर. भाई फेवरेट गुफ्तगू वो होती है कि जो स्टाफ रूम में नहीं है उसके बारे में बात करते हैं. बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होती है, इससे दिल नहीं करता ख़त्म करने का. पीपल गेट लेट बिकॉज ऑफ दैट. अपनी क्लास का टाइम हो गया लेकिन एक गल और सुन ले, एक गल और सुन ले यार. बड़ी जोर की आ जाती हो तो ये इन कमजोरियों को तो ठीक करना चाहिए ना. ये वाला एस्पेक्ट है सिर्फ, मैं ये चाहता हूँ कि विदाउट बीइंग अच्छा, इसके नतीजे में आप ये कहें कि नहीं देखिए लोग तो मेरे बारे में ये बातें करते ही हैं ना तो मैं भी कर लेता हूँ, ये अब गलत हो गया. ये साईं बनना नहीं है, ये अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होना है. तो बस इतना ही मेरी तरफ से. और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है इसमें. मैं पिछले दिनों टीचर से भी अपने कॉलीग से भी अलवारित के ये बात कर रहा था कि एक चीज़ जो मुझे बड़ी सीरियसली लगती है कि प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि क्या ऐसा लिटरेचर है जो ये बताए कि ईमान की अफजाइश कैसे होती है. ईमान इज नॉट अ स्टैटिक फिनोमेना, क्योंकि ईमान बेसिकली इन सब चीज़ों की बुनियाद है. ये जिसको कैरेक्टर कहते हैं, मैं प्रिंसिपल्स पे खड़ा हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, अगले ने मुझे गाली दे दी है, बड़ा दिल कर रहा है कि गाली का जवाब दे दूँ, दे सकता हूँ, ताकत भी है, नहीं दे रहा हूँ, बड़ा सप्रेस कर रहा हूँ, अच्छा फिर उसने अगली गाली फिर दे दी है, तो मैं क्या करूँ अब. ये वाले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, क्या करूँ, हाउ कैन आई ये अपने ऊपर किस तरह काबू को बरकरार रखूँ, वो है जो ईमान की फोर्स है कि मैं ये खुदा के लिए कर रहा हूँ. अपनी ज़िंदगी में खुदा को मौजूद कर दें ज़्यादा, ठीक है जी, एंड उसकी बेसिस पर अपनी मीनिंग मेकिंग इस दुनिया में, अपने मामलात में खुदा को ऐड कर लें. ये हम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम. नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग जो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ये प्योरली इंटरनल प्रोसेस, ठीक है जी. मैं अगर करता हूँ या नहीं करता हूँ ये मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि देखिए ये करने से हमें इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी. आप करेंगे या नहीं करेंगे आप मुझे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यू विल फील मोर रिलैक्स्ड. आप लोगों से पूछिए ज़रा किसी वक्त कि मैं कई दफ़ा ये मिसाल दे चुका हूँ कि आपको भी ये लगेगा कि लोग भी पीपल टॉक अबाउट देयर लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे. ये पिछली छः महीने पहले तक ज़िंदगी बड़ी पुरसकून थी, पिछले छः महीने से बड़ी सख्त आजमाइश में हूँ मैं. तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यार आपने ये सोचा है कभी कि ये उतनी सख्त आजमाइश नहीं है जितनी पिछली थी. वो तो आपको फील ही नहीं हुआ कि आजमाइश थी. कितने भूल गए हम खुदा को, इतनी आसानी मिल गई हमें कि हमें याद ही नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने एक आसानी में डाला हुआ है, बड़ी आजमाइश में डाल दी है. जैसे ही उसने पकड़ा, जोल्ट किया और ये कहा कि संभल जाओ टाइम आ रहा है, तो मुझे लगा वो बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिए. ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हम ठीक कर सकते हैं ना अगर हम इसको रियलाइज करना शुरू कर दें. ये है ईमान की अफजाइश, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल प्रोसेसेस. इट कैन नॉट बी, यानी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इस पर प्रैक्टिस करें, ये करें वो करें, मैं आप शेयर करूँगा कि आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को, इससे लोगों को फ़ायदा होगा. ये प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग है. आप उसको कितनी देर तक रखेंगे ये आपने रखना है. यू वॉन्ट नीड टू लिसन टू मी अगेन एंड अगेन, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना पड़ेगा. ये एक ये वो चीज़ है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं जी. कॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी डिसेप्टिव थिंग. हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं माइंड कंट्रोल डेवलप कर लिया और ये अब मैं आई कैन कीप माई माइंड क्लियर ऑफ एनी थाट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर इंस्टेंस, तो मैं समझता हूँ कि अब ठीक हो गया. और फिर उसके बाद 6 महीने जब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो पता चलता है कि वो वापस 1 मिनट पे आ गया. दिस इज स्लिपरी ग्राउंड. ये प्रॉब्लम है, हमें कॉन्स्टेंटली ऑन द अप रहना है, एंड गोइंग अप इज़ डिफ़िकल्ट. इसको भी रिकग्नाइज करना है. नीचे जाना बड़ा आसान है जी. पानी को आप ऊपर से छोड़ दें, नीचे आराम से चला जाएगा. ऊपर लेके आना है तो ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, यू नो, सब कुछ करना. यही ज़िंदगी का मामला है. ज़िंदगी को अगर एलिवेशन की तरफ लेके जाना है तो एक एक कदम पर जोर लगेगा, एक एक कदम पर. और ये 24/7 का प्रॉब्लम है. ये है जो नो रिलैक्सेशन, ये चीज़ है जिसकी वजह से हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं. और ठीक है यार, आले देख लाने, ये एक प्रॉब्लम. अच्छा जी, कहते हैं हाउ टू जी.
एक सवाल था
जी. जी,
आपने प्रिंसिपल क्वेश्चन की बात की, प्रिंसिपल होने की बात की. प्रिंसिपल आदमी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अपने लिए भी, दूसरे आदमी के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई रिमेंबर माय फादर, तो वो प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि जो मैंने कह दिया बस, दैट्स इट. क्या इसका मतलब ये है?
नहीं, ये मतलब मेरा नहीं है. ये मतलब जी देखिए, एक प्रिंसिपल जो है, जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इज़ कंपैशन. अगर मेरे साथ ये बात हो रही है, मैंने अपनी एक राय दी है और यहाँ पर कोई साहब जो है वो कहते हैं कि मैं इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ सिटिंग हियर, यू नो, एट द टॉप ऑफ द क्लास, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, नहीं नहीं बस, अब मैं और मज़ीद गुंजाइश नहीं दूँगा. नहीं, दूसरों की राय सुन लें, हो सकता है उससे मुझे लर्निंग मिले, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी. I'll be able to maybe phrase my point of view better next time. तो इसलिए मैं इसको प्रिंसिपल नहीं कहता हूँ. यहाँ पे ये तो सेल्फ राइटिसनेस की तरफ चली जाएगी बात अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया, आखिरी बात मेरी है. ये थोड़ी सी डेंजरस बात है. अल्लाह ताला हम सब को इससे बचाए, बुज़ुर्गों को भी बचाए. लेकिन ये इससे मेरी मुराद ये नहीं है, ठीक है जी. दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन. बींग ओपन माइंडेड, बींग रिसेप्टिव टू व्हाट यू आर सेइंग, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ज़िंदगी का. मैंने तो इससे बहुत सीखा है जी ज़िंदगी में. व्हेन आई हैव बीन, मैंने अपने बच्चों से बहुत सीखा है. वेरी ऑनेस्टली जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ठीक होने वाली है, तो एक तो मुझे उनसे फीडबैक बहुत मिला, ठीक है ना जी, और दूसरा बहुत अच्छा मिला. तो इसलिए आई थिंक इफ आई वुड क्लोज दैट डोर तो इसमें नुकसान किसका होगा, मेरा ही होगा ना. अच्छा, और ये देखिए फिर एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज करता हूँ. अच्छा या बुरा, अपने आप को हमेशा ये याद रखिए कि दैट यू आर अ रोल मॉडल फॉर समबडी. ये हमेशा याद रखिएगा. हो सकता है मे बी समबडी दैट यू डोंट इवन नो. सीरियसली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको देखकर कोई और भी इशारे पर खड़ा हो जाए. ये हो सकता है ना, कभी नोटिस किया? अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी करके बताता हूँ. अगर आप इफ़ यू आर ब्रेकिंग अ सिग्नल तो लाजमन आपके देखा देखी पीछे कुछ और तोड़ देंगे. ये तो लाजमन हो जाएगा, कोई खड़ा हो या ना हो ये चले अच्छी बात है, लेकिन दूसरी नेगेटिवली तो हो जाएगा. तो इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें. एंड दैट डज नॉट रिलेट टू द फैक्ट दैट आई एम अ टीचर और आई हैव बीन अ टीचर. इट रिलेट्स टू द फैक्ट दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग. हम सब इंसान हैं और इंसानों को देखते देखते हम दूसरों को ये इन्वाइट कर रहे होते हैं कि तुम भी ऐसे कर सकते हो, तो अच्छा करें, अच्छा कर दें, ठीक है ना जी. अच्छा जी, ये मैं कर लूँ जी, ये पहले भी. हाउ टू ओवरकम लेट अवेकनिंग हैबिट विदाउट नो रीज़न इफ ऑफन डिस्टर्ब माई होल डे स्केड्यूल. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हम अभी इसको ले नहीं रहे जी. मैं इस पर बात करूँगा इंशाल्लाह. आई टोटली एग्री विद यू दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और हमेशा एक चीज़ को जहन में रखिए, एक छोटा सा प्रिंसिपल आपसे अर्ज करता हूँ कि जब भी आपने कभी कोई बुरी आदत को रिप्लेस करना हो, एक तो ये कि बुरी आदत को ओवरकम करना हो, तो कोशिश ये कीजिए कि उसको ओवरकम करने का ज़्यादा ख्याल ना करें, ठीक है जी, बल्कि उसको एक अच्छी आदत से रिप्लेस करने का ख्याल करें. यानी रीफ्रेज योर प्रॉब्लम इन अ वे दैट इट डज़ नॉट रिमेन अ प्रॉब्लम. आप रीफ्रेज करें इस तरह से कि मैं आई एस्पायर टू स्लीप अर्लियर टू लिव अ मोर अफेक्टिव डे, ठीक है जी. यानी डोंट टेल मी व्हाट यू डोंट वांट टू डू. आई डोंट वांट टू वेक अप लेट इन द डे. नो, टेल मी व्हाट यू डू वांट टू डू. इसको अफर्मेटिव बना दें. एक चीज़ तो ये कि इसके नतीजे में आपके लिए वो ज़्यादा आसान हो जाएगा. क्यों हो जाएगा आसान? इसकी वजह ये कि आपकी जो सबकॉन्शियस है, कहते ये हैं कि सबकॉन्शियस नेगेटिव्स को नहीं सुनती. मसलन आप इसके विरुद्ध करने लग पड़े कि आइंदा मैं ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, तो वो नहीं को डिस्काउंट करके ऐ करना है, ऐ करना है, ऐ करना है सुन रही है, ठीक है जी. तो आप, और फिर ये कि आप बार बार उस चीज़ का ख्याल लेके आ रहे. आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप समझते हैं, गिव योर सेल्फ एन आइडियल टू वेक अप इन द मॉर्निंग. आइडियल से मेरी मतलब कोई एक्टिविटी, एंजॉयबल एक्टिविटी जो आप करें सुबह के टाइम पे, उसके लिए अपने आप को सोचें कि ये मैंने करना है. इससे आपको यू विल फाइंड दैट इंटरनल डिज़ायर टू वेक अप इन द मॉर्निंग. और अदरवाइज मुझे नहीं मालूम कि इस सोसाइटी में जिसमें कि अब रात का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, पता है आपने, एडिसन ने बल्ब नहीं ईजाद किया, पता है ना ये, यानी एडिसन ने कल्चर ईजाद किया है. एडिसन ने असल में रात ख़त्म कर दी है. ये जो कुछ ईजादात ऐसी होती है जो कि असल में महज चीज़ नहीं ईजाद हुई होती, वो एक नई जिंदगी ईजाद हो जाती है उसके नतीजे में. एडिसन की ईजाद इज़ वन ऑफ दोज. बल्ब की ईजाद ने असल में रात का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है. वो जो इकबाल ने भी कहा है ना जावेद नामा में, कोई इस तरह की बात है ना कि तुशबा फरीदी चिरागा फरीदम, मैंने चिराग बना लिया है, अब रात ख़त्म हो गई है. तो इसके नतीजे में जो रात की और फिर अब 24 घंटे टीवी, मैं उसको रहमत समझता हूँ जी. आज जब मैंने लुक बैक, मैं जब छोटा होता था तो उस वक्त 3 घंटे का टीवी होता था, 9 बजे ख़त्म हो जाता था और उसके बाद वालिदैन के साथ बैठ के तो बातचीत हुआ करती थी, अच्छी और बुरी मतलब सब चीज़ें चलती थी. ज़्यादातर तो डांट ही पड़ती थी लेकिन बहरहाल इंटरेक्शन तो था ना. यू वुड टॉक फेस टू फेस विद पीपल. अब तो सिचुएशन ये नहीं रही, ठीक है ना जी. अब 24 घंटे जो है, अब अगर मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को नसीहत भी कर रहा हूँ तो सामने मैच लगा हुआ देखते हुए कर रहा हूँ. अरे इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बच्चे, समझ आ गई ना. वो भी उधर देखते, हाँ जी ठीक है ठीक है, तो बात इधर ख़त्म हो रही. सो यू नो दिस इज बिकम द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. इससे हमें कोशिश करें कि निकलना है जी इंशाल्लाह. और ये बात आपकी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स कि हम किस तरह से अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ी सी पहले हम तैयारी करेंगे जी इंशाल्लाह. और अगर बहुत जल्दी चाहिए हो, आपको ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब कर रही हो, तो मेरे फिर आप अलग से रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इस पर बात कर लेंगे जी. जी
अस्सलाम वालेकुम सर. सर करैक्टर एंड पर्सनैलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ये दो अलग हैं, इनको एक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ये कह सकता है कि इनको आइडेंटिकल होना चाहिए. लेकिन किसी हद तक, तेने बहुत हद तक नहीं, किसी न किसी हद तक पर्सनैलिटी करैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव इसको तो होना चाहिए. यानी कि पर्सनैलिटी और करैक्टर में इतना ज़्यादा अगर गैप आ जाए कि हिपोक्रेसी लगने लगे, तो और इंसान खुद जानता है कि ये मैं प्रेजेंट गलत कर रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं है ना. ऐसा ही है ना कि इनका गैप एक हद तक ही होना चाहिए, और एक रेलिवेंस भी होनी चाहिए करैक्टर में और पर्सनालिटी में, वरना शख्सियत की जो सोसाइटी के साथ रेलिवेंस है वो फेक हो जाएगी. लोग उसको कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ है तो सोसाइटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी.
बड़ा अच्छा सवाल किया जी, एंड दिस अलाउज मी कि मेरी प्रेजेंटेशन में जो एक थोड़ा सा इम्बैलेंस था वो मैं क्लियर कर दूंगा जी. आपका बहुत शुक्रिया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो ये इम्बैलेंस पैदा होता है जिसको आपने हिपोक्रेसी से ताबीर किया, मैं इसके बारे में ये अर्ज करूँ कि ये क्यों होता है. ये इसलिए होता है कि हम पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट से शुरू करते हैं बात, ठीक है जी. हम असल में ये कहते हैं कि बेटे जाके माफ़ी मांगो. वो कहते किस बात की, बस मांगो. अच्छा वो माफ़ी फील नहीं कर रहा लेकिन मांग लेगा, फिर क्या करे. आप बहुत बड़े हैं उसके सामने, आपका चांटा भी बहुत बड़ा है उसके सामने, ठीक है, माफ़ी मांग लेगा. दिस क्रिएट्स हिपोक्रेसी. जब ये बात उलट हो जाए, इनसाइड आउट हो जाए, तो इससे हिपोक्रेसी नहीं पैदा होगी, ठीक है जी. यानी मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़, आपका ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आपके दिल से अस्सलामुअलैकुम निकले और आप बोले नहीं. बोलना जो है वो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट है, और फील करना दुआ का ये कैरेक्टर डिवेलपमेंट है. ये बात समझ रहे हैं आप, यानी वो मुझे डिवेलप करना है, अस्सलामुअलैकुम भी कहना है, ये पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में नज़र आना चाहिए. लेकिन जब मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ जो बातें हैं, और जाहिर पर स्ट्रेस करता हूँ, तो हिपोक्रेसी असल में उधर से पैदा हो जाती है. अदरवाइज अगर इसको आप सीक्वेंस को ठीक कर लें, बैलेंस कर लें, यानी मिसाल के तौर पर हम बच्चों को अपने रोल मॉडल से, जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी कि वो थैंक यू और वेलकम की तरफ आना शुरू हो गया है इस एज में, ठीक है जी ना. ये जो थैंक यू, और इसी तरह से वो अगर जिस तरह वो ग्रीट करते हैं अपने घरों में, उस तरह वो ग्रीट भी करने लग पड़ेगा. लेकिन आपको उस ग्रीटिंग की समझ तो देनी पड़ेगी ना, कि ये बेटा असल में हमारी दुआ होती है एक दूसरे के लिए, यू नो वी आर प्रेइंग फॉर ईच अदर. हम एक ये वो कॉन्वर्सेशन हैं. तो कैरेक्टर डिवेलपमेंट में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ जी. अगर मैंने किसी के हवाले से बात करनी है, 3 पार्ट्स. रोल मॉडलिंग, आपकी रोल, बिकॉज यू आर द इन्फ्लुएंस, आपकी तरफ से ये इनिशिएट होगा. नंबर 2 इज योर द एनवायरनमेंट दैट यू आर क्रिएटिंग, उसके मैसेजेस और आपके मैसेजेस में तादाद नहीं होना चाहिए. हम ये कहते हैं कि हम आज से ये फैसला करते हैं कि हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और इतने में वो एक वेटर जो है वो आके तो इधर चाय रखता है और चाय थोड़ी सी गिर जाती है, तुम ओए अन्ना है तू, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट मैसेज, ये तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है मेरे पैगाम में जो मैं आपको दे रहा हूँ और मेरे रवैये में। ये जो एनवायरनमेंट है इसको ठीक करना है। एंड नंबर थ्री, ओपन एंड अनहिंडर्ड कम्युनिकेशन। ओपन एंड अनहिंडर्ड कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं मोइज़ अमजद से ये बात नहीं की जा सकती, तो इस ख्याल को पहले ख़त्म करें। यानी ये की जा सकती है, ये की जा सकती है। मैंने अपने आप को इस फोरम पे प्रेजेंट किया है, इसका मतलब है आप कर सकते हैं बात, ठीक है जी। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। या अनहिंडर्ड कम्युनिकेशन का एक और तकाजा ये कि हम ये पब्लिक गैदरिंग में बैठे हैं, तो अब ये ना हो कि कोई आदमी अनसेफ फील कर रहा हो कि मैंने अगर ये बात कर दी और मैंने बात ठीक ना की तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ये इस एनवायरनमेंट की फ्लॉ है ना, एनवायरनमेंट के एट्रीब्यूट्स को ठीक करना है हमने, नंबर दो। और नंबर तीन, ओपन कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, ओपन एंड अनहिंडर्ड कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ें हैं जो कि असल में इंसान को वी कैन एक्चुअली हेल्प ईच अदर इन डेवलपिंग गुड कैरेक्टर। ख़ास तौर पर अगर मैं इन्फ्लुएंस में कर रहा हूँ जी, ये कह रहे हैं जी मईशत का मसला कैसे हल किया जाए अगर मिजाज से मुख्तलिफ करियर का इंतखाब कर लिया गया है, क्या ये अखलाकी मसला है? ये अखलाकी मसला मजबूरी अगर है तो क्या कर सकते हैं जी इसमें, बट आई थिंक दैट इंसान को ये ज़िंदगी को बड़ी वैल्यू देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। यू वर मेड टू बी एक्सेप्शनल, मीडियोक्रिटी इज़ माई चॉइस, इसको जहन में रखें। मैं ये आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ जी, हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला ने दुनिया में गंद पैदा नहीं किया है जी, अल्लाह ताला ने दुनिया में मीडियोक्रिटी पैदा नहीं की है। लेकिन मैं असल में जल्द से जल्द, और ये सोसाइटी के दिए हुए स्टैंडर्ड हैं, जल्द से जल्द अपने आप को सेटल भी करना चाहता हूँ और फिर जो मिल रहा है उस पर इक्तफा भी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं मुझे अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन लेवल का कारपेंटर बनाया था, लेकिन मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। मैं मीडियोकर इंजीनियर बनना पसंद करता हूँ या मीडियोकर डॉक्टर या मीडियोकर लॉयर बनना पसंद करता हूँ, क्योंकि सोसाइटी उसको वैल्यू करती है, बजाय इसके कि मैं एक एक्सेप्शनल प्लम्बर बन जाऊँ, एक्सेप्शनल, ठीक है। आई थिंक आप असल में अपने शौक को बहुत वैल्यू दें और उस शौक को डिवेलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप करें। ये दिस विल एक्चुअली टेक यू टूवर्ड्स दी एक्सेप्शनैलिटी ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, कि मैं, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास बनाया है, मैं मामूली चीज़ नहीं हूँ, अल्लाह की मखलूक हूँ, मैं अल्लाह की क्रिएशन हूँ। इस चीज़ को वैल्यू देना शुरू करें और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं जी। अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, फिर जस्ट ट्राई इट आउट, थोड़ी सी मुश्किल भी आएगी, अपने शौक़ के लिए मुश्किल भी बर्दाश्त करें। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अपने आप को आजमाइश में डाल दें, आजमाइश में कभी ना डालें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आजमाना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ कोई पैरेलल अरेंजमेंट्स करके ट्राई टू मूव टूवर्ड्स व्हाट यू रियली लव टू डू, ये ज़रूर करें, ये हौसला अपने अंदर पैदा ज़रूर करें जी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया है जी, यानी आई टेल यू कि मैंने थर्ड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट्स को छोड़ते हुए देखा है, इसलिए कि ये मेरी फील्ड नहीं है, और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेहनती स्टूडेंट्स को, कि नहीं मैं ये शौक़ रखता हूँ, मैंने ये करना है, they just did it and they were extraordinary in what they did. So ye cheez jo hai, you are extraordinary, just remember that. And this is not a motivational thing that I'm saying, honestly maine aapko uski reason bhi batayi hai, if you don't agree with that reason I don't have a problem. Yani maine ye bataya aapko ki mere nazdeek Allah taala ne exceptional quality paida ki hai. Allah taala ki makhlooq ko ye nahi hai ki ye chha jaye aur ye kuch log acche hain, aisa nahi hai, exceptional log paida kiye hain. लेकिन हम असल में सोसाइटी की मजबूरियों के अंदर फंस जाते हैं और कुछ हमारे टारगेट्स होते हैं, कुछ हमारे शौक के ख़िलाफ़ हमने पैदा कर लिए। व्हाट इज़ योर थॉट्स अबाउट वर्ल्डली विजडम एंड कैरेक्टर? आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय वर्ल्डली विजडम। आई मीन इफ़ यू मीन व्हाट यू कॉल प्रैक्टिकल विजडम, स्ट्रीट विजडम, I don't think that the two go together. Street wisdom can generally be considered as something quite opposite character. Street wisdom is like being shrewd. ठीक है जी, मैं समझता हूँ, मैं लोगों को I can take advantage of people, not let people take advantage of me. ये वाली जो चीज़ है, ये character, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो शायद ये नहीं है जी. मेरे ये स्टैंडर्ड्स नहीं है जी. यानी मेरे लिए ये मसला नहीं है कि आप एडवांटेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड्स इससे बुलंद करके हमें बनाने की कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के बंदे बनने की कोशिश करें. हम लेट्स ट्राई टू बी क्लोसर टू गॉड. वो क्या चीज़ है जो आपको करीब ले जाएगी? क्योंकि ये मौका मिला हुआ है, ये मौका है, आज है ना. कितनी खुशी की बात है, ये आज है और ये किसी लम्हे ख़त्म हो जाना है. उसको जितना करीब हो सकते हो जाओ. एक और स्ट्रीट विजडम का धोखा किसी को दे देंगे तो शायद और थोड़े से दूर हो जाएंगे. नहीं, मेरा ख्याल है कि स्टैंडर्ड से निकलने की कोशिश करें जी. दिस इज वेयर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये इशू नहीं है. मेरा ये इशू नहीं है जी. जी जी, ओके. इसको हम अगली दफा कर लें फिर. ये जो दो रह गए हैं ये हम ठीक है. ठीक है जी, ठीक है.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है. मेरा सवाल है कि आपने शुरू में करेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डिस्टिंक्शन की. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हम ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर. इसकी कुछ रीजंस भी होती हैं. अगर कोई ऐसा से कमतरी का शिकार है तो उसे बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ शो ऑफ करता है. या बिजनेस में आपने अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरह से डील करना होता है, अगर जो आपका दिन कितना भी बुरा है. और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमें इसकी तरफ ड्राइव करती हैं, लेकिन हम करेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इस तरफ हमें कौन सी चीज़ ड्राइव करेगी जो हम अंदर से महसूस करें?
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैं जब मैं सोचता हूँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है जी. और मैंने जब भी इस पर बात की है तो मुझे एक क्वेश्चन मार्क रहता है मेरे जहन में कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो एथियस्ट हैं, उनको क्या चीज़ ड्राइव करती है. मैंने हमेशा इसमें इस डिस्कशन को अवॉइड किया. एक बड़ी रिलीजियस डिस्कशन है. मेरे लिए क्या चीज़ ड्राइविंग फोर्स है? वो तो खुदा की कुर्बत ही है जी, कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ. और ये जो एस्पेक्ट है ये मुझे किधर से मिलता है कि यानी जब कुरान मजीद ये कहता है कि ये जो इंसान के अंदर खैर और शर का शऊर है ये उसके अंदर वदियत किया गया, ये मज़हब से प्रसीड करता है जी. ये इंसानियत के नाते हमें दिया गया, ना कि मुसलमान होने के नाते. यानी ये मज़हब से प्रसीड करता है, ये मज़हबी, ये एक डायरेक्ट इल्हाम है अल्लाह ताला का. और इसकी बेसिस पर मैं इसकी बेसिस पर अगर अपना तज़किया करूँ तो कामयाब हो जाऊँगा. ये कुरान मुझे बताता है जब, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ सफिशेंट मोटिवेशन फॉर अ बिलीवर इन गॉड. ठीक है जी, अ वेरी सफिशेंट मोटिवेशन. अब सवाल सिर्फ एक रह जाता है कि व्हाट डू आई मीन बाय बिलीफ इन गॉड. फेथ, वो क्या फेथ है कि जो मुझे कंसिस्टेंटली इस पर कायम रख सके? क्योंकि फेथ के अंदर खुद अप्स एंड डाउन आती रहती हैं. ठीक है ना जी, तो वो मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, इस पर हम पूरी गुफ्तगु इंशाल्लाह करेंगे. लेकिन जो वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि अगर ये नहीं है, अगर फेथ इन गॉड नहीं है तो फिर क्या वजह हो सकती है? तो उसका मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो आवाज़ है ये इतनी स्ट्रांग है, ये इतनी स्ट्रांग है कि आदमी को अगर वो इस आवाज़ को सुनने की तरफ अपना कान लगाए और इस पर अमल करने की कोशिश करे तो ये एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ भी डेवलप करती है. ये खुद एक ताकत बनती है कि मैं इसके ऊपर खड़ा रहूँगा मैं. और इसी की बेसिस पर यानी वो जो लोग जिनको हम कहते हैं कि जिन्होंने सच्चाई के लिए जाने भी दी हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अगरचे वो उस तरह से खुदा के मानने वाले ना हों, तो मेरा ख्याल है कि वो उस जगह तक इंसान इस स्ट्रेंथ की वजह से पहुँच सकता है. लेकिन वो तब पहुँचता है, ये भी कुरान मजीद से मालूम होता है कि वो तब पहुँचता है कि जिस वक्त वो इसकी आवाज़ को सुनने की तरफ तवज्जो दे. यानी देखिए, मैं ये आवाज़ बड़ी हल्की सी हो सकती है अगर मैं इसको ना सुनूं, ये ख़त्म ही हो जाती है. वो जो जिसकी मिसालें भी आती है ना बाज़, कि यानी आपको पहली दफ़ा झूठ बोलने पर जो कॉन्शियंस की आवाज़ होगी आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी, ओ यार क्या हो गया ये, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह माफ़ कर दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए. मुझे ख्याल ये आता था कि कहीं मेरी मेरे वालिद साहब फौत ना हो जाए, कि मैंने झूठ बोल दिए कि अब यू नो ये ना हो जाए, कहीं नाना जी फौत ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें खास हम मतलब ये उन्हीं को नहीं नहीं असल में वो जो फियर है ना उसकी, वो कैसे झलकेगा, क्योंकि फिर तो असल में मैं मर गया तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया ना, फिर तो मैं असल में ये बताना ये चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है कि जो हमें उस तरफ भी स्ट्रांग करती है। वो बेसिकली मेरा उस आवाज़ को सुनना है, उसको मैं सुनूं और बेकमो कास्ट उस पर अमल करने की कोशिश करूं तो फिर अल्लाह ताला उसे मज़ीद सपोर्ट करता है और फिर ये पॉसिबल है कि अल्लाह ताला रास्ते भी खोल दे ईमान के। क्योंकि ईमान क्या है क्या नहीं है ये असल में जब तक ज़िंदगी है इसके बारे में उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। तो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी, थैंक यू वेरी मच जी। दूसरा सवाल
जी, अस्सलाम वालेकुम
जी बेटा।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप करैक्टर की बात कर रहे हैं तो करैक्टर रेलिवेंट होता है आपकी मोरालिटी और एथिक्स के, ठीक है, तो इसके लिए अब हम एज अ होल जब बात करते हैं तो उसका ग्राउंड क्या होगा। मिसाल के तौर पे हम थ्योरी से पढ़ते हैं मोरालिटी की, तो उसके अंदर मॉरल सब्जेक्टिविज्म है कि मैं जो एक सब्जेक्ट हूँ तो मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, मेरे लिए अल्कोहल ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। इसी तरह ये कि कल्चर रिलेटिविज्म की एक थ्योरी है कि आपका जो कल्चर है वो डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर सती का कॉन्सेप्ट था कि वो अब जो एक बेवा खातून होती थी उसे वो जला देते थे, तो इस तरह से सेट हो गया। इसी तरह एक इगोइज्म की थ्योरी है कि जो मेरी प्रॉफिट में होगी चीज़ एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह डिवाइन कमांड थ्योरी की आपने भी बात की है और कांट की थ्योरी, तो इसके बारे में हम जो कोर आप कह रहे हैं कि एक कॉमन ग्राउंड सेट करने की ज़रूरत है, तो वो कॉमन ग्राउंड क्या होगा बेसिकली।
देखिए ये जो जितनी भी थ्योरी है ना जी, इसको मैं अगर समराइज करूँ तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंटल थियरीज हैं, ठीक है जी, कि हम इसको यानी अगर आप पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियरी है उसको सामने रख लें तो प्राइमरीली ये बेसिकली उस चीज़ की भी डेवलपमेंट करती है जिसको कोलबर्ग ने बहुत बयान किया। कोलबर्ग का ये कहना कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये किन स्टेजेस से गुजरती है और सारा हाउ डज इट हैपन और किस तरह से हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियलिटीज़ चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम, ये जो एस्पेक्ट है इसमें मैं जिस वक्त इसको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इससे बात वादे हो जाएगी। अभी मैंने अभी इनका अब्दुल्ला का जवाब देते हुए मैंने ये गुजारिश की कि हमारी अंदर की आवाज़ होती है और मेरे अंदर ये आवाज़ जब आती थी तो ये थी कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये फौत ना हो जाए, कहीं ये, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें नहीं बयान की। एक पहले लेवल ऑफ डिवेलपमेंट पे इंसान के अंदर ये जिसको हम स्टेज वन कहते हैं, इंसान के अंदर जिसको कहते हैं ना गिल्ट, वो नहीं, वो गिल्ट नहीं होती जो आपके अंदर होपफुली जो आपके अंदर होगी। मेरे आपके अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि गिल्ट का मतलब ये है कि मैंने गलत किया है, ये है गिल्ट। पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे गिल्ट ये होती है कि मैंने गलत किया है किसी को पता ना चल जाए। अच्छा, बल्कि इससे भी पहली स्टेज पर ये होती है कि मैंने गलत किया कि उसको पता ना चल जाए जिसने कहा था कि ये गलत है, और वो जनरली मेरे पेरेंट्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही जी? तो एक है कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट, गिल्ट डेवलप करेगा और गिल्ट एज स्टेजेस प्रोग्रेस जब मैं इसको तीसरी स्टेज पर आता हूँ तो ये गिल्ट वो बन जाता है जो आज हम बैठे हुए हैं जिस जगह पर खड़े होकर सुनते हैं। तो इसी तरह से हमारा एक्सपोजर होता है, जिस वक्त हम पहली जगह आँख खोलते हैं और ज़िंदगी के बारे में समझना बूझना शुरू करते हैं। तो मैंने भी आपको मिसाल दी कि मेरे नवासे ने वो थैंक यू कहा, अगर वो उसके घर में शुक्रिया बोला जा रहा हो तो वो कुड़िया करके कुछ बोलेगा, यू नो समथिंग टू दैट इफेक्ट, उससे मिलता जुलता होगा, यानी दिस इज़ वॉट ही इज़ गोइंग टू बी एक्सपोज टू, और वो वही वैल्यू अडॉप्ट करना शुरू करेगा और इस वैल्यू को अडॉप्ट करने के बाद वो घर से बाहर निकलेगा, अपने मोहल्ले में घूमता फिरता नज़र आएगा, उसके बाद उधर से कुछ चीज़ें अखज करना शुरू करेगा, उसमें वो तजाद महसूस करेगा कि घर में तो ये होता है यहाँ पर ये हो रहा है, अब ये एक्सपोजर बढ़ रहा है। इसके बाद टीचर्स ऐड हो जाएंगे ज़िंदगी में, एक्सपोजर मज़ीद बढ़ना शुरू हो गया, वो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फैलता चला जाएगा, एंड देन यू कम टू अ स्टेज where you start actually questioning the values that we learned from our society. ठीक है जी, मैं जिन जब ये कहता हूँ कि ये एक universal principles की बात करता हूँ तो basically ये वो principles हैं जो कि सती वाले भी मानते हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ इस society में, जो कि जिसमें अमल कोई नहीं करता इस society में, ये ध्यान में रखिए, यानी हम सारे वो सिर्फ मानते ही हैं, ٹھیک ہے نا جی, لیکن پھر بھی پوری طرح سے مانتے ہیں, عمل نہ بھی کرتے ہوں تب بھی مانتے ہیں. افریقہ میں بھی مانا جاتا ہے, جنگلوں میں بھی مانا جاتا ہے یہ والے پرنسپلس, ٹھیک ہے جی. اب وہ پرنسپلس یونیورسل ہیں, ان کی اپلیکیشن کلچرل ہوتی ہیں اور وہ کچھ ہو نہیں سکتی. یعنی اپلیکیشن مثال کے طور پر رسپیکٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو کھڑے ہو کے ملیں گے, نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گلے ملیں گے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, ہاتھ ملائیں گے یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کریں گے جو ہماری سوسائٹی نے ہم کو سکھایا ہے, لیکن رسپیکٹ از دا یونیورسل پرنسپل. یہ بات واضح ہوگی جی, دس از ہاؤ آئی سی اٹ. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر میں جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ یونیورسل ہیں جی. جی آخری سوال کر لیتے ہیں جی, ہم ان چیزوں کو وی کین ٹیک دیم ٹو دا نیکسٹ سیشن. یہ دو سوال رہ گئے ہیں اور جی کوائٹ رائٹ جی, انیٹ ہیں. سم ٹائمز وی آر ناٹ اویئر آف دوز انیٹ پرنسپلز, سم ٹائمز سم بڈی ول ٹاک اباؤٹ دیم. انیٹ کا کرائیٹیرین بڑا خوبصورت میرے خیال میں قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے کہ وہ یہ کرائیٹیرین یہ ہے کہ جس وقت آپ سبجیکٹ ہیں, لیٹس سے میں یہاں پر سائیکالوجی کا سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں یوز کر رہا, یعنی اف یو آر دا سبجیکٹ آف رسپیکٹ ہاؤ ڈو یو فیل لائک اٹ, ڈو یو لائک بینگ رسپیکٹڈ, اف یو لائک بینگ رسپیکٹ. یعنی اس میں جو بیسک پرنسپل ہے موریلٹی کا وہ مجھے لگتا ہے کہ گولڈن رول ہی ہے. وہ جو دا گولڈن رول جو ہے نا, جو یہ کہتا ہے کہ ڈو ان ٹو ادرز ایز یو وانٹ ادرز ٹو ڈو ان ٹو یو, تم دوسروں کے ساتھ ویسے معاملہ کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں. یہ دس از نون ایز دی گولڈن رول. دی گولڈن رول اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہی آئے گا. اور یہ دس از اے کامن رول, اس کو بلکہ اسٹیون کووی نے پرنسپل کہا ہے. پرنسپل, ون آف دا پرنسپل از دی گولڈن رول, کہ آپ موریلٹی میں اصل اسٹینڈرڈ ہی ہونا چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھلا انسانیت والا رویہ رکھیں تو مجھے بھی آپ کے ساتھ انسانیت والا رویہ رکھنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ اس پیمانے پر لے کر آئیں گے تو وہ اگر اف اٹ پروو ٹو بی رائٹ دین اٹ از رائٹ. اس کو قرآن مجید نے وہ سورہ متففین میں بیان کر دیا نا, اور اس کو دیکھیے کس کس شدت کے ساتھ بیان کیا. یہ کہا کہ یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا یہ گمان بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کے حضور پہ اٹھائے جائیں گے؟ اگر یہ گمان بھی نہیں رکھتے تو پھر ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو کم از کم گمان تو ہو تو ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ بھی ابھی کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے, اللہ خیریت رکھے. یہ دو کویسچنز رہ گئے ہیں, یہ میرا خیال ہے اس کو ہم اگر آپ اگلے سوالات میں یہ سب سے پہلے اگر کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ.